ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ रीना बेन का, जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से स्वागत सत्र को संभाला। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण सत्र में उद्घाटन सत्र के लिए उपस्थित हैं। ज्ञान सरोवर, ये शांत पावन स्थल जहां प्यार और अपने पन की बयार हर पल हर क्षण हर मन को आनंदित करती रहती है, ऐसी अलौकिक दिव्य भूमि परमात्म भूमि में आप सभी मीडिया जगत से जुड़े हुए महानुभावों का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अपने लिए ही तालियां बजाइए। कहते हैं भगवान की मर्जी होगी तो कार्य और हमारा आना निश्चित होगा। आप सभी परमात्म निमंत्रण से यहाँ पधारे हैं तो जरूर कोई विशेष प्रयोजन होगा जो परमात्मा ने अपने विशेष जिम्मेवार बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया, आह्वान किया है। तो पुनः आप सभी का हृदय से सत्कार। आज इस उद्घाटन सत्र को एक अलग अंदाज से प्रारंभ करते हैं और आप सोचेंगे वो क्या, आज हम स्वयं को भरपूर करेंगे एक मिलन मुलाकात से, एक प्रेरणा से। हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी जो कि वर्तमान में संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं, आप सभी को ज्ञात होगा पिछले ही माह अप्रैल में दादी रतन मोहिनी जी जो संस्था की मुख्य प्रशासिका रही, और हो सकता है आप में से बहुतों ने उनसे शक्तिशाली दृष्टि वर्तानी बोल सुने होंगे और उसका लाभ लिया होगा। आपने अप्रैल 8 को अपनी ये देह का त्याग किया और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। तत्पश्चात हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी, राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी ने संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला है। आप संस्था में युवा काल से ही, आरंभ से ही जुड़ गईं। ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा, दादी प्रकाश मणि जी एवं हृदय मोहिनी जी की पालना लेते हुए आप संस्था में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती रहीं। यूएनओ में विशेष बीकेस को, ब्रह्मा कुमारीज को एनजीओ के रूप में 1981 से आप रिप्रेजेंट करती रही हैं। और विशेष मैं कहूंगी कोविड काल के दौरान में बीकेस परिवार को श्रेष्ठ चिंतन उत्साहित रखने के लिए अमेरिका से आप जूम पर बातचीत से सहयोग का साथ देती रही। आपके सुनने का, आपको सुनने का इंतजार अनेकों हजारों भाई बहनों को रहता था कि आप जो कहेंगे उसे हमें फॉलो करना है, जीवन में उतारना है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका कैरेबियन कंट्रीज का कार्यभार देखते हुए वर्तमान में आप मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यरत हैं। आप शांत चित्त शक्तिशाली व्यक्तित्व की धनी हैं। आपका अभिनंदन। और अब हम आपसे प्रेरणा लेंगे वीडियो के माध्यम से, तो हम देखेंगे आदरणीय मोहिनी दीदी जी को। ये 5 मिनट का वीडियो है जिसको हम अभी देखेंगे। अमेरिका से विशेष आप पधार रही हैं हमारे बीच, हम आपका तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो अब हम देखते हैं, सुनते हैं।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। ओम शांति है ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और आप भी सभी एक एक शांत स्वरूप आत्मा हैं। तो हम आपस में एक दूसरे को बहुत बहुत शांति से और प्रेम से कहते हैं ओम शांति। आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप यहाँ पर इस सभा में, इस स्थान पर जो बहुत पवित्र और शांति का स्थान है पहुंचे हैं। आपका स्वागत है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आज सबसे ज्यादा जरूरत सारे विश्व में है शांति की, मन की शांति, संबंधों में शांति, हर प्रकार से शांति की ही जरूरत है। और शांति के लिए क्या चाहिए? शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार। तो मैं समझती हूँ कि शांति के अनुभव के लिए, प्रचार के लिए, संदेश के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। हर प्रकार की मीडिया आजकल देखिए, ऐसे तो पहले रेडियो होता था सिर्फ, फिर न्यूज़पेपर होता था, फिर टेलीविजन हुआ, और अभी तो इतना सहज हो गया है, चाहे उसको सोशल मीडिया से कहें या किसी भी प्रकार का मीडिया है, कोई मैगजीन भी है, जो भी ऐसा साधन है जिससे संदेश का प्रचार हो। तो आप सभी जो भी यहाँ आए हैं मीडिया के, आप सभी को भावना से और जिम्मेवारी से ये समझना चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से शांति का संदेश देना है। और कहावत भी है कि यूनाइटेड नेशन ने कहते हैं कि संघर्ष और युद्ध मन से ही शुरू होता है ना, वॉर्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो शांति भी बेशक हम ये नहीं है कि सुलह करने से, नेगोशिएशन से या ट्रीटीज से होगी, परंतु शांति तब होती है जब आपस में व्यवहारिक संबंध में विश्वास हो और एक लक्ष्य होता है। तो एक बहुत सिंपल तरीके से हम शांति मन की कैसे हो, शांति संबंधों में कैसे हो, शांति व्यवहार में कैसे हो, समाज में हो, परिवार में हो, अनेक राष्ट्रों में हो और फिर सारे विश्व में हो। तो इसलिए शांति का संदेश, चाहे ओम शांति के शब्द से मैं शांत स्वरूप हूं, तो जैसे मन की शांति सबसे पहले आवश्यक है, तो कैसे मीडिया के द्वारा आप अपने शब्दों में जो जनता समझ सके, परंतु आप यहाँ हैं, आप खुद भी अच्छी तरह से जो अभ्यास सिखाया जाता है राजयोग का, वो सीखिए और खुद भी शांति का अनुभव करिए, और उस अनुभव और समझ या ज्ञान जो है उसका संदेश तो है वो सभी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी 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 लेखनी को, अपनी अपनी जो भी जिस भी साधन से आप संदेश देते हैं उनके द्वारा आप विश्व में जरूर शांति का संदेश, कोई अनुभव से, कोई कहानी से, कोई ज्ञान से, ये संदेश सबको पहुंचाना आपकी ड्यूटी भी है और जिम्मेवारी भी है। और मैं समझती हूँ कि आपको खुद भी बहुत बहुत खुशी होगी किसी के भी संदेश के द्वारा, कहीं भी अगर शांति का सब अनुभव करेंगे तो आपको उनकी आशीर्वाद भी मिलेगी। और मैं फिर यही कहूंगी कि आप भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पहुंचे हैं, और जरूर आप कुछ बातें सीख करके, कुछ अनुभव करके इसका संदेश सभी तक पहुंचाएंगे। मेरी आपके प्रति यही शुभकामना है, शुभ भावना है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, जो संस्था के इस समय मुख्य प्रशासिका है। आपने हमें शांति का संदेश दिया है, आपके शब्दों को अगर मैं इस तरह से पिरोऊं, हवा का रुख बदलना है तो कलम उठाइए, नफरतों को हराना है तो प्यार लिखिए, सूचना में सौहार्द घोल दीजिए, मीडिया को शांति का हथियार बनाइए। और अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सज्जा के लिए सस्नेह आमंत्रण दे रही हूं। हमारे बीच हमारे यूं कहें मुख्य अतिथि कहूं या ये कहूं हमारे वरिष्ठ, जीवन को दिशा देने के लिए हमारे बीच बैठे हैं आदरणीय मिनिस्टर के विश्नोई जी। साथ में मैं आमंत्रण दे रही हूं हमारे यहीं के विधायक राजस्थान के, मैं आपको भी आमंत्रण दे रही हूं विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, भ्राता करुणा जी, हमारे एमएलए साहब, चीफ एडिटर महानगर गोपाल शर्मा जी, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, आदरणीय बहन शीलू जी, भ्राता प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, प्रोफेसर भ्राता मानसिंह परमार जी, बहन सरला जी, मैं आप सबका, भ्राता मृत्युंजय भाई जी, मैं आप सबको इस मंच पर आमंत्रण दे रही हूँ। आएंगे और मंच सज्जा हमारी तभी पूरी होगी जब आप सब मंच पर पधारेंगे। आज के विशेष अतिथि कहूँ, विशेष मेहमान कहूँ, भगवान के नूर कहूँ, आप सब मंच पर उपस्थित हो रहे हैं और हम तालियों के द्वारा हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी संयुक्त मुख्य प्रशासिका हमारे बीच पधार चुकी हैं, आपका अभिनंदन है। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, ज्ञान सरोवर की आप निदेशिका हैं, तो आपका हमारे बीच अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और अब हम प्रभु स्मृति थीम से इस महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ करेंगे। सभी जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा सीधा होकर के बैठे।
जीवन में बीज बोलो, सा
आतिथ्य सत्कार को जी चाहता है। यही ये खूबसूरत पल होते जब मन से मन मिल जाते हैं। तो आइए, मैं आमंत्रण दे रही हूं इस शांति प्रभु प्रेम के बाद। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारे मंच का अभिनंदन करेंगे बैजेस, पुष्पों और अंग वस्त्र के द्वारा। मैं आमंत्रण दे रही हूँ बहनों को, कदम आगे बढ़ाएं और हमारे मेहमानों का अभिनंदन करेंगे। और हम आप सभी का अभिनंदन हृदय से, भावनाओं से, तालियों के माध्यम से करते हैं। तालियां बजती रहे, इसमें कमी क्यों? ये तो अभिव्यक्ति का तरीका है जो हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति देते हैं। हम खुश हैं अपनों को अपने मध्य पाकर, हम खुश हैं जो हमें दिशाएं देने के लिए बैठे हैं उन्हें अपने बीच पाकर, हम खुश हैं यूं आज। आज हमारे सभी वो विशेष प्रभु रत्न हमारे सामने हैं जो हमें बहुत से आगे बढ़ने की विधि देंगे। तो पुनः आप सबका अभिनंदन, मंच का अभिनंदन। और ये ना सोचिएगा कि आपका अभिनंदन, अपने लिए भी तालियां बजाइए, आपका भी अभिनंदन है। कहा जाता है ये जीवन प्रभु की अमानत है, ये भी कहते हैं जीवन प्रभु की देन है, जिसमें शांति, प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता जैसे मानवीय गुण भरे हैं। जब जब जीवन में इन गुणों की कमी आ जाती है, रिक्तता आ जाती है, मानव से अमानवीयता की ओर, इंसानियत से हैवानियत की ओर हमारे कदम हो जाते हैं। आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर संसार की ओर शांत स्थिर मन से नजर डालें, तो वातावरण में कहीं भय है, कहीं उदासी है, कहीं चिंता है। तो मन से, मुख से ये आवाज निकलता है कि क्या हो गया है आज के इंसान को। एक बहुत पुराना गीत कवि प्रदीप जी का गाया हुआ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ऐसे में मीडिया की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आवश्यकता है मीडिया स्वयं स्वयं को उठाए, समाज को, प्रांत को, राष्ट्र को दिशा देने का साहसिक जिम्मा संभाले। तो आओ आज करें मंथन। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ती हूँ। ये धरा विषाक्त कैसे हो गई? कहाँ गई शांति और सद्भाव की शक्ति? आओ फिर से सींचे आध्यात्म के अमृत से, जगे इंसानियत, मिटे हैवानियत, बन जाए ये देव भूमि। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रण दे रही हूँ बहन श्वेता जी। श्वेता जी, आप नेशनल फोक एंड कथक आर्टिस्ट हैं, आगरा से पधारी हैं। आपने, ये सौभाग्य की बात है, अब ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं और राजयोग के सेशंस आप टीवी पर, एफएम पर लिया करती हैं। तो मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ, आए और अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा सभी का स्वागत करें। बहन श्वेता जी, शांति के सागर में स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति और आपको सम्मान कर रहे हैं आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी, बहुत शुक्रिया। पुनः जोरदार तालियां आपके सम्मान में। और आगे बढ़ते हुए, कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक शब्दों के द्वारा अभिनंदन ना हो। और उसके लिए मैं ऐसे विशेष व्यक्तित्व को आमंत्रण दे रही हूं जो आपके काफी करीब, आप उनसे चिर परिचित हैं, हमारे आदरणीय भ्राता कोमल भाई जी। आप हमारे मध्य हैं, आप हेडक्वार्टर्स के पीआरओ हैं, मधुबन न्यूज चैनल के आप एडिटर हैं, शिव आमंत्रण मासिक पत्रिका के भी आप एडिटर हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थान सरकार से आप मान्यता प्राप्त हैं। एनडीटीवी में भी आप सिरोही जिले का कार्य देखते हैं। आपके लिए कहना चाहूंगी, बात फैलती है तो असर करती है, सच की लौ तो अंधेरे में भी जला करती है। जिस मीडिया में हो ईमान की रोशनी, वो हर सीमा के पार भी उजाला करती है, सीमा पार भी उजाला करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रण दे रही हूं भ्राता कोमल जी।
ओम शांति, ओम शांति। इस ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखिएगा, क्योंकि सूचनाओं के जब बौछार होगी तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। हालांकि आप लोग तो इसके अभ्यासी हैं। जिस छत्र के नीचे हम बैठे हैं वो परमात्मा शिव की कृपा से है और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की कर्मभूमि है, हमारे दादियों की कर्मभूमि है। तो सबसे पहले हम स्वागत उस परमपिता परमात्मा शिव का करते हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा जो साकार माध्यम बन के उनके काम को एक पत्रकार की भांति पूरी दुनिया में जो उन्होंने फैलाया, उनका हम स्वागत करते हैं। उनकी फिजिकल मौजूदगी नहीं है, लेकिन उनकी जो साया है हमारे साथ है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अनुभव कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आदरणीय सुदेश दीदी हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं, इस ज्ञान सरोवर की प्रभारी भी हैं, मौजूद हैं, बैठी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के बिश्नोई जी हैं, बहुत संजीदा इंसान हैं, मंत्री हैं, इंडस्ट्री के कई विभाग इनके पास हैं। 5 दिन पहले ही हमारी उनसे बात हुई तो मैंने कहा भाई साहब आप आओ तो अच्छा है, क्योंकि देश भर के जर्नलिस्ट होंगे, आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं तो आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इनके प्रोग्राम लगे हुए भी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आप यहाँ पे मौजूद हैं। रात को 11 बजे ही आए थे अहमदाबाद और वहाँ से चल के पूरी रात सुबह 4 बजे अपने परिसर में आप लोगों के बीच में पहुँचे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ हमारे एक बड़े पुराने मित्र हैं गोपाल शर्मा जी, बीच में बैठे हैं। तकरीबन इनसे मेरा 20 साल का पुराना नाता है और ये महानगर टाइम्स के मालिक, संपादक और वहाँ के विधायक भी हैं। 20 साल पहले से हमारी अर्जियाँ इनके पास इकट्ठी थी और कई बार प्रोग्राम बनता रहा, बिगड़ता रहा, लेकिन अंततः आप यहाँ पहुँचे हैं। आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में बात करें तो एक और शख्स हमारे पास मौजूद हैं, विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, जो दैनिक जागरण के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। इनसे हमारी मुलाकात तकरीबन 2008 या 9 में हुई थी और तब से हम लोग लगातार संपर्क में रहे। और आपको भी मालूम है कि पत्रकारिता में समय निकालना अपने लिए मुश्किल होता है, दूसरे के लिए हम जीते हैं, लेकिन तब के हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए आप यहाँ पे दूसरी बार आए हैं। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिसकी वजह से सम्मेलन हो रहा है, जिसकी संकल्पना है, आदरणीय करुणा भाई जी हैं हमारे बीच में और आप लोगों को जान करके अच्छा लगेगा कि ये खुद पत्रकार रहे हैं। भले ये एजुकेशन में इंजीनियर्स रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता में UNI से लेके और तमाम अखबारों और टीवी में आपने काम किया है और हम आज हमारे संस्थान के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ मल्टी मीडिया हैं। 86 साल की उम्र है और आज भी उतने ही एक्टिव हैं जितने हम और आप हैं। आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में इस संस्थान के अतिरिक्त महासचिव, हालांकि करुणा भाई जी का भी दायित्व और बढ़ा दिया गया है, वो भी अतिरिक्त महासचिव हैं, मृत्युंजय भाई जी हैं हमारे बीच में बैठे हैं। जितने राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और VIP के दौरे होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, जो सभाएं होती हैं, उसके आप प्रधान हैं, उनकी भूमिका आप निर्वहन करते हैं, आप हमारे बीच में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ में हमारे बीच में संजय द्विवेदी जी हैं, हमारे बीच में बैठ के हमसे कुछ, उनकी बड़ा अच्छा नेचर है कि हमेशा चुटकुला की भांति कुछ न कुछ कहते रहते हैं। ये हमारे बीच में है, हमेशा बाबा के घर से इनका लगाव रहा है। हमारे संस्थान में एक कमल दीक्षित जी हुआ करते थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी हम लोगों के पास खलती है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, जो लोग जानते हैं उनको याद आते होंगे, उनकी कमी को आप भर रहे हैं और उनकी भूमिका में आप यहाँ बैठे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आप पधारे हैं यहाँ पर। डॉक्टर मान सिंह परमार जी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, बाबा के घर से बहुत पुराना उनका लगाव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में। आप यहाँ पे पधारे हैं, जब भी उनको याद किया जाता है तो यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। आप हमारे बीच में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में सरलानंद बहन हैं जो इस प्रभाग की नेशनल क्वालिटेटर हैं और उसके साथ भी पीआर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उनका तजुर्बा है, वो हमारे बीच में बैठी हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम का जो सुंदर संचालन कर रही हैं वो चंद्रकला बहन जी हैं, जो मीडिया प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और पहले ये भी पत्रकार रही हैं, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह में इन्होंने काम किया है, लेकिन अभी तो बाबा का काम कर रही हैं, लेकिन आज भी पत्रकारिता की भूमिका में इनका योगदान है। आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात, शांतनु भाई हमारे बीच में, वो इसके पहले मंच पे वही बोल रहे थे, शांतनु भाई को आप सभी लोग जानते हैं। शांतनु भाई दिन रात करके और आप लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ आते हैं और आप लोग यहाँ मौजूद हैं। उनका, शांतनु भाई का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज बधाई देता हूँ कि आज इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपकी बड़ी भूमिका है। और उससे सब लोगों को मैंने बोल दिया, लेकिन आप अपने को सबसे पहले वाली पंक्ति में इसलिए रखिएगा कि अगर आप यहाँ नहीं बैठते तो हम कुर्सियों को नहीं बताते हैं। और आप लोग यहाँ पे आए हैं पत्रकारिता को अपने किनारे रख के अपने बारे में सोचने के लिए, अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए, अपने सेहत के बारे में सोचने के लिए, अपने आजीविका के बारे में सोचने के लिए कि कैसे उस सर्वांगीण विकास के तौर पर बात किया जाए। क्योंकि पत्रकारिता में आप दूसरों की बात करते हैं लेकिन आपकी बात करने वाला कोई नहीं है, तो ये जो मंच है वो अपनी बात करने के लिए है, आपको समझने के लिए है, खुद को समझने के लिए है। आप यहाँ कल से आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ की हवा, देख रहे हैं यहाँ का पानी, देख रहे हैं यहाँ का रहना उठना, खाना पीना बैठना। आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी तीसरी आंख है, आप अगर अपनी तीसरी आंख को खोले रखिएगा तो तीन चार दिनों में ये जो तीसरी आंख है एक नए समाज और नए भारत का निर्माण करेगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे स्वागत के लिए बोलने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। माफ कीजिएगा, एक सीलू दीदी, वो क्या वो दिख नहीं रही थी, सीलू दीदी हमारे बीच में बैठी हैं। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्वर कोकिला हैं और बाबा के समय से ये जुड़ी हुई हैं और इनके जो प्रवचन हैं पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में नए उजाले भर दिए। आप हमारे बीच में बैठी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत कोमल भाई जी आज की सभा के मध्य, और बहुत शुक्रिया। अगले पायदान की ओर चलते हैं। हमारे बीच बैठी हैं वो शख्सियत जो बहुत शांत रहती हैं, शांत चित्त से ही कार्य करती हैं, और जब भी आप किसी से मिलती हैं सामने वाले के जहन में शांति भर देती हैं। ऐसी शांति की गांभीर्य की मूर्ति, कर्तव्य निष्ठ, आप समझ पा रहे होंगे, वो स्वच्छ हृदय की धनी, सरल हृदय की धनी आदरणीय सरला बहन जी हमारे मध्य हैं। आप हमें लक्ष्य और उद्देश्य की ओर लेकर के चलेंगी। आप यूं तो मीडिया विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही आपने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में पब्लिक रिलेशंस एवं एचआरडी मैनेजर के रूप में कार्यरत रही हैं। आप बीएचईएल मैगजीन की भी आप एडिटर रही हैं। यहाँ का जो ग्लोबल फोरम फॉर पब्लिक रिलेशन है, ये फोरम पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन के स्पिरिचुअल पार्ट को सपोर्ट देने के लिए कार्य करता है, उसकी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साथ ही आप 32 वर्षों से राजयोग का अध्ययन कर रही हैं। हमारा जो तेलुगु डिपार्टमेंट गॉडलीवुड स्टूडियो में है उसमें भी आप हेड ऑफ द तेलुगु डिपार्टमेंट है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आदरणीय सरला बहन जी आएंगे और हमें लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे। क्या लक्ष्य हो, क्या उद्देश्य है?
ओम शांति। सर्वप्रथम इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के मुख्य होस्ट कहो या स्रोत कहो, स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा को और हमारे और भगवान के बीच में मीडियम बन करके इस धरती को स्वर्ग बनाने में लगे हुए पिताश्री ब्रह्मा बाबा को, स्वयं इस महान सभा में उपस्थित होने के लिए मैं बहुत हार्टफुली इनवाइट करते हुए उनकी उपस्थिति को ए फ्यू सेकेंड्स हम अनुभव करेंगे। ए फ्यू सेकेंड्स। ओम शांति। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस की थीम है रोल ऑफ मीडिया एज ए हार्बिंजर ऑफ पीस एंड हार्मनी। इस विषय को बहुत बहुत हमारे दिल में वो थीम को छाप लगाने के लिए बैठे हैं आदरणीय मंच चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इनॉग्रल सेशन आदरणीय मंत्री जी कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, MLA डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, हमारे संस्था के प्रमुख जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी, करुणा भाई जी, डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, शीलू दीदी, हमारे संजय त्रिपाठी जी, भाई परमार जी, संजय द्विवेदी जी, त्रिपाठी जी एंड ऑल दी हमारे प्यारी बहन संचालिका चंद्रकला बहन, कोमल भाई जी एंड ऑल माय डियर brothers and sisters who have come from different places of this country. A conference ko mindful aur powerful banane ke liye aap yaha patharehe hain. Aapke liye sadar pranam. Om shanti. Is conference ki मुख्य उद्देश्य भगवान के उद्देश्य है। भगवान चाहते हैं इस दुनिया शांति से रहे, हर उनके बच्चे खुशी में जिए। इस लक्ष्य को आधारित करते इस थीम को हम चुने हैं। आज की दुनिया के देखे तो दुनिया ऐसी चल रही है, इसे बहुत अतीत है और बाहर है। अगर दुनिया की एक झलक देखे तो पूरा दुनिया ऐसी चलती है। एक स्ट्रीट रोड साइड चाट का व्यापारी वेंडर होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी पूरी बेचते हैं। वो पानी पूरी लेने के लिए तीन बहनें शामिल होते हैं। एक बहन पूछते हैं पानी पूरी सबको बांटते हैं, एक बहन को बोलता है वो वेंडर आप 10 रुपये देना पानी पूरी का पैसे, दूसरे महिला को बोलते हैं आप 100 रुपये देना क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, यू आर ए ब्यूटिफुल गर्ल। तो वो 100 रुपीस पे करते हैं। वो पे करने के पहले तीसरा बहन जो है वो तुरंत उनके गूगल पे में डाल देती हैं 200 रुपये। वो 200 रुपये अब क्यों डाला? तो बोलती हैं, मैं उन महिला से बहुत सुंदर हूँ, इसलिए मैं 200 रुपया डाला हूँ। तो ऐसे ही इस दुनिया चल रही है। तो देह अभिमान के पीछे बहुत वो व्यस्त है। इस दुनिया को बदलने के लिए भगवान ने एक लक्ष्य चुना है, आप सबको वो सुंदरता ने आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए और आपको अच्छी रीति से श्रृंगार करने के लिए यहाँ बुलाया है। यहाँ से आप जो जाते हैं तो हरेक एक बहुत बहुत आंतरिक सुंदरता को लेके जाएंगे, बहुत सुंदर बन के यहाँ से जाएंगे। ये तो हमारा लक्ष्य है। सुंदरता आती है दिव्य गुणों से, सुंदरता आती है दिव्य ज्ञान से, और सुंदरता आती है आपके भगवान के दिए हुए शक्तियों से। ये सब यहाँ आपको मिलता है। इन 5 दिनों में आप एक 5 डिफरेंट सेशंस हैं राजयोग के शिक्षा द्वारा, आप सबको इस ज्ञान का पहचान मिलता है, इनके साथ भगवान को पहचानने के मौका मिलता है। तो इस जो पहचानक आप जो लेते हैं दुनिया को, इस पहचानक भगवान की पहचानक को आप दर्शाने दर्शन करने के लिए निमित्त हो, इसलिए भगवान आपकी मदद भगवान को चाहिए, इसलिए आपको चुन चुन के यहाँ बुलाया है। आप हरेक भगवान के मददगार बन, इस एक महालक्ष्य को आपके सामने रखते हुए आपके प्रोफेशनल जीवन में भगवान को लक्ष्य को जोड़ते हुए आप सुखी बने, ताकि हरेक के जीवन में सुख का लहर लाए, यही हमारे लक्ष्य है और उद्देश्य है। मैं समझती हूँ आप ये लक्ष्य और उद्देश्य जो भगवान का है इसको दुनिया में लाने में बहुत बहुत व्यस्त रहेंगे, मान लेंगे। इसी गुड विशेस से, शुभकामनाओं से, शुभ भावनाओं से, मेनी मेनी गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू ब्रदर्स एंड ऑल योर फैमिली मेंबर्स। ओम शांति।
शांति की भावनाएं चारों ओर फैलानी है, शांति की शक्ति स्वयं में भरनी है, औरों में भरनी है, यही लक्ष्य लेकर यहां से जाना है। और आज का सत्र जिसका महत्वपूर्ण विषय है मीडियाज रोल एज अ हार्बिंजर ऑफ ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, वैश्विक शांति और सद्भाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की भूमिका, और उसके लिए मैं आह्वान करने जा रही हूं हमारे मध्य विराजित प्रोफेसर मान सिंह परमार जी। आप इस विषय पर दिशा निर्देश देंगे। आप पूर्व कुलपति रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के। आपके जीवन का मैं ध्येय कहूं, एक मिशन कहूं, आप एक नई पौध तैयार करते हैं शिक्षाविदों एवं मीडिया विशेषज्ञों की। आपने मीडिया जगत में अपनी बौद्धिकता, पैनी दृष्टि, प्रभावी संप्रेषण क्षमता, दूरदर्शिता, कुशल कार्यकुशलता के जरिए अपनी एक अलग विशेष पहचान बनाई है। अनेक पुस्तकों का आपने लेखन किया है, अनेक सम्मान आपने प्राप्त किए हैं अवार्डों के द्वारा आपको, बहुत से अवार्ड्स के द्वारा आपको नवाजा गया है। और साथ ही साथ अगर मैं एक विशेष बात कहूं, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली IIMC के लिए जो कमेटी बनी थी, आप उसके चेयरपर्सन रहे। इन्हीं के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इस संस्थान ने। मैं आपको आमंत्रण दे रही हूं, आएंगे और अपनी की नोट स्पीच हमारे मध्य रखेंगे। प्रोफेसर मान सिंह परमार जी, तालियों के द्वारा आपको मैं बुला रही
हूं। ओम शांति। सम्माननीय मंच और देश भर से आए प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं, बहुत ही प्रासंगिक और गंभीरता लिए हुए ये विषय है। पहले मैं दो पक्ष कहिए, दो पहलू कहिए, दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद अपनी बात की आगे की शुरुआत करूंगा। मित्रों, वर्तमान समय में ये परिदृश्य आज का है विश्व का। वर्तमान समय में जब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पूरा विश्व दुख और अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, संसार के कोने कोने में मार काट मची हुई है और रोजाना हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है, जगत के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ रहे हैं, संसार में सुख शांति एवं प्रेम के लिए आध्यात्मिकता का पाठ बहुत आवश्यक है और मन की शांति के बिना विश्व शांति संभव नहीं है, और मन की शांति ब्रह्मा कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय से हमें प्राप्त होती है। और अगर हम शांति की बात करते हैं तो शांति तो भारत की संस्कृति कहिए, संदेश कहिए, पूरे विश्व के लिए रहा है। और अगला पहलू मैं रखता हूं जो भारत का पक्ष है। ओम देव शांतिर अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर विश्वै देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिर ओम शांति शांति शांति। पूरे त्रिभुवन में, पूरे विश्व में, पूरे अंतरिक्ष में शांति हो, वनस्पति में शांति हो, लोगों में शांति हो, जीवों में शांति हो, हमारा तो ये सोच रहा है, भारत का तो ये संस्कार रहा है। तो हम अगर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए त्रेता युग की अगर बात करते हैं, तो एक समय में जब राम जी समुद्र किनारे पहुंचे, रावण से युद्ध करना था और सेना को समुद्र पार करना था, तो उस समय समुद्र से राम और लक्ष्मण ने विनती की कि किसी भी तरह से हमको ऐसा रास्ता दिया जाए कि हम ये समुद्र पार करके लंका पहुंच सकें। परंतु समुद्र ने बात नहीं सुनी और फिर राम जी ने जो बात कही थी, भय बिना होए ना प्रीति, जब थोड़ा सा धनुष बाण निकाला और समुद्र ने आकर के कहा कि मैं रास्ता देता हूं प्रभु, या रास्ता बताता हूं, और आप जाइए श्रीलंका और इस आतंकवाद का, इस राक्षसी आतंकवाद का अंत करिए। और दूसरा ही रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग मिलता है, अंगद को शांति दूत, शांति के अग्रदूत के रूप में राम जी श्रीलंका भेजते हैं और शांति की बात जब करते हैं तो अंगद से ये कहते हैं कि आप रावण को क्या कहना है, आपको वहां क्या बातचीत करना है, हमारा भला हो, मतलब हम बिना युद्ध के, हमें किसी भी तरह से हमारी जो पत्नी है सीता जी हैं वो मिले और उसका, मतलब रावण का कल्याण हो। आप सोचिए कैसी कैसी सोच हमारी, कैसी मानसिकता हमारी, कैसा संस्कृति हमारी, और तीसरी बात मैं कहूंगा महाभारत की। जब कौरव और पांडव आमने सामने लड़ने को तैयार हो रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण को शांति के अग्रदूत के रूप में कौरवों के सामने या कौरवों की सभा में भेजा गया या वो गए। उस समय की बात सुनिए आप, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं है, एक प्रस्ताव नहीं है, ये शांति एक आवश्यकता है। शांति के बिना विकास नहीं हो सकता, शांति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर दोनों कौरव पांडव मिलेंगे तो पूरे पूरे भारत का जहां तक भी साम्राज्य था उसको बहुत अच्छे से करेंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि शांति कोई विकल्प नहीं है, शांति का कोई विकल्प नहीं है, परंतु शांति असंभव भी नहीं है। तो आप सोचिए, हमने त्रेता युग में शांति की बात करी, हमने द्वापर युग में शांति की बात करी, और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर शांति का झंडा लहराया। उस युवा सन्यासी ने ऐसा शांति का संदेश दिया कि अमेरिका के लोग हतप्रभ हो गए। महात्मा गांधी को हम जानते हैं, महात्मा गांधी जी तो शांति के प्रतीक थे, शांति के बिना ऐसा शांति के बिना उन्होंने शांति के साथ उन्होंने भारत को आजादी दिलाई, बिना खड़ग ढाल की बात करते हैं हम लोग। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो परिदृश्य है भारत का, वो तो हम शांति प्रिय रहे हैं, हमारा सोच शांति प्रिय रहा है, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि वर्तमान में जो परिदृश्य जो मैंने शुरू में बताया आपको, भारत तो शांति की बात करता है लेकिन हमारा पड़ोसी देश इधर का भी उधर का भी दायां भी कोई शांति की बात नहीं करता है। अभी अभी हमारे कुछ दिन पहले ही 28 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चीन हमारी न जाने कितनी वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर बैठा हुआ है, बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है और भारत के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। तो किस तरह से हम, कोई हमें मारेगा, कोई हमारे जमीन पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेगा, तो भी हम शांति के साथ पेश आ रहे हैं। देखिए, भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसा, अभी तक मुझे जो मैंने न्यूज़पेपर में कल तक पढ़ा था या आज दिखा है, कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया है जो शांति को भंग करता हो या शांति के खिलाफ जाता हो। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषणों में कहा कि भाई शांति से ही विकास हो सकता है। तो इस तरह से शांति, फिर आजादी के बाद की मैं बात करता हूं, यहां के प्रजापति कुमारी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के जो बाबा थे, शिव बाबा के जो उनके बातों को लोगों तक पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, ब्रह्मा बाबा आजादी के बाद जब यहां आए तो उन्होंने शांति का झंडा माउंट आबू पे गाड़ा और वो झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है अभी। ये हम शांति की बात करते हैं, परंतु सवाल यह है कि मीडिया की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि मीडिया की भूमिका के भी दो पहलू हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं और कई लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लग सकता है। परंतु मीडिया का कार्य मित्रों ये है कि जैसे मान लो अशांत देश है, अशांति फैला रहे हैं, युद्ध बंदियों को परेशान कर रहे हैं, जैसे आजकल यूक्रेन और जो गाजा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का माहौल है उसको लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि सत्यता लोगों को पता चले, संवेदनशीलता के साथ में समाचारों को देना। आजकल खास करके यहाँ प्रिंट मीडिया के तो बैठे हैं संपादक जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शायद हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक ऐसा दौर चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा सा लोगों में नफरत पैदा फैलाने का काम भी कर रहे हैं। चार लोगों को बिठा लेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे, एक को इधर से उत्तेजित करेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे और वो कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे और फिर हेडलाइन शुरू हो जाएगी। ये दायित्व तो नहीं हमारा, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हमारी। मीडिया कोई दूसरी इंडस्ट्री जैसा नहीं है कि जहां कुछ और प्रोडक्ट बनता हो, मीडिया का सामाजिक सरोकार है, मीडिया का समाचार समाज के प्रति एक दायित्व है, उसको निभाना बहुत आवश्यक है। और इसमें शांति और सद्भाव में तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की हो सकता है, निभाता भी रहा है, कई समय निभाया भी है। और कुछ जगह, कुछ रवांडा में जब नरसंहार हुआ था तो एक रेडियो चैनल ने ऐसे इस तरह से खबरें दी कि वहां बहुत ही अशांति फैल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, परंतु ऐसे उदाहरण भी है जिससे मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी से भूमिका निभाई है, जिम्मेदारी से समाचार दिए हैं, संपादकीय लिखे हैं और भी कई इस तरह के जो मीडिया के काम होना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम यहां बैठे हुए हैं, इंटरा पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, अंतरा व्यक्तिक, हमारे अंदर कैसे शांति हो, हम मन की शांति कैसे करें। मन की शांति होगी तो आगे की शांति भी होगी। परंतु एक होता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, अंतरराष्ट्रीय संचार। अंतरराष्ट्रीय संचार कैसा होना चाहिए, हमारे यहाँ के मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए, हमारे यहाँ के जो दूसरे चैनल हैं सोशल मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए, उस पर भी विचार करना चाहिए और उनको जिम्मेदारी से समाचार देना चाहिए। यहाँ सोशल मीडिया की बात किए बिना तो बात पूरी नहीं होती है। सोशल मीडिया क्या करता, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, आम लोगों को, आम व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, उसको आवाज दी, उसको वाणी दी, परंतु दूसरी तरफ बहुत ही नकारात्मक बातें भी सामने आ रही है जो समाज में नुकसानदायक हो सकती है बहुत ज्यादा। तो सोशल मीडिया पर ध्यान देना जरूरी है। और एक और विषय है कि मीडिया साक्षरता होना चाहिए लोगों में। मीडिया, अब वो जो कहते थे ना हम दर्पण है, वो नहीं रहा। अब मीडिया समाचारों को, संचार को आकार देता है। जैसा आकार देता है वैसा आकार आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि हम तो जो समाज में हो रहा वही बताते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाचारों को या अन्य बातों को आकार देने का काम भी मीडिया कर रहा है। तो आज के समय में मीडिया की शांति और सद्भाव को आगे बढ़ाने में श्री कृष्ण जैसी भूमिका होना चाहिए और मीडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देश आने वाले समय में बहुत बड़े युद्ध से कहिए, बहुत बड़े संकट से कहिए गुजर सकता है। इसकी संभावना है क्योंकि सामने वाला आप पर बम गिराएगा। पाकिस्तान का मंत्री बोलता है हमारे पास पाव आधा पाव के बम रखे हैं, उसको ये नहीं पता बम कितने क्या उसके होते हैं बैठ के। परंतु ऐसा है, पाकिस्तान के जो राजनीति है वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए यहाँ के मीडिया को बहुत जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करना चाहिए और इस शांति और सद्भाव को पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। हम यहाँ आए हैं बहुत अच्छी वाइब्रेशंस लेकर के जाएं, बहुत अच्छे समाचार दें, बहुत अच्छे से हम अपने मीडिया में काम करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मीडिया का कार्य है सत्य पर आधारित खबर देना, समझ पैदा करना, संवाद लाना, समस्याओं को सुलझाना और अपनी भूमिका को ठीक रूप से निभाना। बहुत बहुत शुक्रिया परमार जी का। अब मैं उस शख्सियत को सामने लाना चाहती हूं जिसके कदम कभी रुकते नहीं, जिन्होंने जिंदगी में बैठना सीखा नहीं। कर्मठ कार्यकर्ता है संस्था के और सदा मदद के हाथ आपके बढ़े रहते हैं, ऐसी वो शख्सियत हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, जिनको किसी जरूरी कार्य से बाहर जाना है, तो पहले मैं उनको आमंत्रण दे रही हूं। आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ ये ग्लोबल प्रोजेक्ट के आप डायरेक्टर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर लिविंग वैल्यूज ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम बच्चों के लिए, विश्व भर के बच्चों के लिए, जिसमें यूनेस्को और यूनिसेफ की सहयोग रहता है, और गवर्निंग मेंबर राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, और अभी इन्हीं दिनों नया एक्वालाइजर शो बना है उसके आप डायरेक्टर हैं। ये डायरेक्टर हैं उस फिल्म के हु एम आई जो एक्वालाइजर शो में दिखाई जाती है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगी एक बहुत सुंदर शब्द कहे जाते हैं गुड बेटर बेस्ट, ये तीन शब्द आते हैं गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल योर गुड बिकम्स बेटर एंड बेटर बिकम्स बेस्ट, ऐसा आप अपने जीवन से दर्शाते हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे आप सब से मिलकर के बहुत खुशी और अनुभव हो रहा है, खुशी का। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस एंड रिट्रीट है, इनकी मुख्य विषय तो अभी आप लोगों ने सुन लिया, हार्बिंजर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी इस विषय पर है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हमारा राजस्थान के ऑनरेबल मिनिस्टर कृष्ण कुमार विश्नोई जी उपस्थित है। सर आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है। आप इस ईश्वरीय कार्य को अभी भी माउंट आबू में अनेक कार्यक्रम हुए उन सभी कार्यक्रमों में आप उपस्थित रहे। हमारा आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी भी प्रस्थान हुए और उसी समय में भी आप उपस्थित रहे। जब भी आपको रात में फोन करो, दिन में फोन करो, सुबह फोन करो, कभी भी फोन करो, ईश्वरीय कार्य में सदा हाजिर रहते हैं। ऐसी रतन हमारा सामने है, उसका नाम ही कृष्ण कुमार, कृष्ण को जब भी बुलाओ आ जाता है। इसके लिए ऐसे कृष्ण कुमार जी को हम पाकर के बहुत खुशी हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। और साथ में जिस गोपाल जी जो MLA साहब है ऑनरेबल प्लस पत्रकारिता में भी आप जुड़े हुए हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारा करुणा जी है, हमारा सुदेश दीदी है, हमारा परमार जी है, और द्विवेदी साहब है प्रोफेसर द्विवेदी जी, और हमारा चंद्रकला बहन, सरला बहन, देश के कोने कोने से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को, मॉडर्न नारदन को मेरा प्रणाम नमस्ते। अभी अभी हमारे चंद्रकला बहन जी ने तो ये तो बैठते ही नहीं, भागते रहते थे। मैं तो कुर्सी पर आराम से बैठा था एक घंटे से। इस विषय जो है बहुत सुंदर विषय है, परंतु द्वापर युग से लेकर के त्रेता युग से लेकर के अभी तक तो इस विषय के ऊपर चर्चा ही होते रहे। शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, और उस शांति दूर होते जा रहे हैं। अभी धरती पर शांति नहीं, मन में शांति नहीं, घर में शांति नहीं, पड़ोस में शांति नहीं, देश में शांति नहीं, और पड़ोस देश में भी शांति नहीं, आसमान में शांति नहीं, समुद्र में शांति नहीं है, वनस्पति में शांति नहीं। ये सब पॉल्यूटेड, परवर्टेड, डिस्ट्रॉइंग, डिस्टर्ब्ड स्टेटस हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में आप सभी मॉडर्न नारद, आप सभी ने देखते हैं इस समय में रात में 2 बजे 3 बजे भी न्यूज देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, वो भी मेकिंग न्यूज नहीं आता है, ब्रेकिंग न्यूज आता है। ऐसी न्यूज भी आप सभी प्रोड्यूस करते हैं, आप सबको देखकर के मुझे बहुत खुशी है। परंतु हम सबका जीवन में जन्म से लेकर के मरण तक, मरण के बाद में भी मे सोन सोर रेस्ट इन पीस हम कहते हैं, ऐसा है ना। मृत्यु के बाद में भी शांति चाहिए, जन्म से भी शांति चाहिए, जीवन में भी शांति चाहिए, और भी अनेक संबंधों से जोड़ते शांति चाहिए, फिर भी अशांत है क्यों? हम लोग अपना मन को नहीं पहचाना, अपना संबंधों को सही पहचाना नहीं, अपने मूल्यों को सही पहचाना नहीं, अपने पिता परम पिता को सही पहचाना नहीं, उनकी शिक्षा को हम लोगों ने सही पहचाना नहीं, उनके संस्कार को हमने सही पहचाना नहीं। उसका परिणाम ही है मन विचलित है, मन चंचलित है, मन एकाग्र नहीं है, मन अपवित्र, पॉल्यूटेड माइंड हो चुकी है। ऐसी पॉल्यूटेड माइंड को पावन बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, एकाग्र बनाने के लिए शिक्षा चाहिए। वो शिक्षा कहाँ मिलता है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलता है? यदि उसके शिक्षा का सही स्थान है तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सेश्वरी विश्वविद्यालय। मुझे गर्व है, एक बार जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी इधर आए थे इसी सभा में, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय में. यू हैव गॉट ए नेशनल यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, म्यूजिक यूनिवर्सिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट देर इज ओनली वन यूनिवर्सिटी दट इज स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी दट इज हियर हियर हियर. ये बात उन्होंने कहा था. मैं इस बात इसके लिए कहते हैं, हम बहुत शिक्षा बच्चों से लेकर के बहुत यूनिवर्सिटी शिक्षा देते हैं, फिर भी हमको शांति नहीं है, फिर भी हम अशांत हैं, फिर भी हम क्यों, हमारे मन को कहीं ना कहीं अशुद्ध बना दिया, संस्कारों को अशुद्ध बना दिया, अपवित्र बना दिया, और संबंधों में मधुरता नहीं है, स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, एकता नहीं है, सद्भावना नहीं है, शुभ भावना नहीं है, और एक देव के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि, ये जो भी वर्तमान समय का देख रहे हम लोग, चाहे पड़ोसी देश हो, चाहे किसी भी देश की परिस्थिति को देखते, चाहे ये वातावरण दिखाई दे रहे, इसके लिए मैं इतना ही कहेंगे, इस साल का हमारा एक थीम है, मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट. एक दो को विश्वास भी होना चाहिए, एकता भी होना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यकता है. हम लोग अपने आप को नहीं सोचते, मन को बारे में सोचते नहीं, संस्कार बारे में सोचते नहीं, संबंधों के बारे में सोचते नहीं, उसको परिवर्तन करने के लिए, डिविनाइजेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए सोचते नहीं, बहुत बहुत चर्चा करते हैं. मुझे ये बहुत खुशी की बात है, 1968 में मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय संपर्क में आया, 5 मिनट के अंदर मुझे इस संस्था की लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, शिक्षा का उद्देश्य और इसको कैसे हमको आगे प्रोसीड करना, उसका लक्ष्य और मुझे अनुभव किया. मैं वो तब से लेकर के मैं 60 ईयर्स अंतराल में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शिक्षा को प्राप्त करता हूँ, अनुभव करता हूँ, स्प्रेड करता हूँ, शेयर करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ, एनलाइट करता हूँ. मैं मीडिया वालों को करता हूँ ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि आप हमारे से ज्यादा लेखनी चलाते हैं, हमारे से ज्यादा समाचार विस्तार करते हैं, हमारे जैसे ज्यादा संकलन करते हैं, हमारे से ज्यादा पब्लिश करते हैं. बहुत मुझे एक बात बता करके मैं वाणी को विराम कर दूं. एक हिंदुस्तान टाइम का एक एडिटर थे पहले, उसका नाम मैं भूल गया, सॉरी. बहुत हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था, उन्होंने बहुत अच्छी बात, इधर माउंट आबू में 2-3 बार आए थे. मैंने आई डेली राइट एडिटोरियल, डेली उन्होंने एडिटोरियल लिखते थे हिंदुस्तान टाइम के एडिटर, और मैं ब्रह्म कुमारी इसका मैं 3 पेज का एक छोटा सा मुरली पढ़ता हूँ कभी कभी, वो भी कभी कभी. हमारा बहन है मेरे पेपर पे पढ़ करके लोग कोई भी आकर के मुझे ये नहीं बताया, मुझे शांति मिला, मुझे सद्भावना मिला, मुझे खुशी मिला, मुझे आनंद मिला, मुझे स्वस्थ मिला, कोई नहीं बोलते. 3 पेज का छोटा सा मुरली पढ़ करके सदा खुश होते हुए मैंने देखा, आनंद जीवन जीने का कला मैंने देखा, पवित्रता की झलक मैंने देखा, आंखों में रोशनी देखा. हम पढ़ करके मीडिया भी रोशनी गुम हो गया, ऐसा लोग कहते हैं. मेरे कहने की भाव है, मैं क्रिटिसाइज करने की बात नहीं कह रहा हूं, परंतु वो मुरली कौन सी है, ईश्वरीय महावाक्य है, ईश्वरीय श्रीमत है, ईश्वरीय शिक्षा है. स्वयं को, अपना जीवन का दर्पण को देखना, परमात्मा को देखना, परंधाम को देखना, भविष्य को भी देखना, विश्व परिवर्तन करने की विधि को उसमें सब समावेश है. उसमें योग भी है, ज्ञान भी है, धारणा भी है, सेवा भी है, संबंध भी है, समरसता भी है, पवित्रता भी है, शक्ति भी है, युक्ति भी है, सब कुछ उसमें. 3 पेज की मुरली 15 मिनट पढ़ने के बाद में मन खुशी से नाचता है. मुझे यही सुझाव देना चाहता हूँ, आप सभी डेली 10 मिनट व 15 मिनट वो मुरली पढ़ें और 10 मिनट योग करें. अपना जीवन का वर्तमान और भविष्य को देखो और भारत को, विश्व को एक सुंदर विश्व बना सकते हैं, और 10-15 साल के अंतराल में हम कर सकते हैं. ऐसी कार्य करने के लिए निमित्त बनो, निर्माण करो, निश्चिंत रहो. ऐसे करने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ, ओम शांति करता हूँ, नमस्ते करता हूँ.
श्रेष्ठ दुनिया के निमित्त बनो निर्माण करो। आप आधार बनो, कर्णधार हो। शांति स्वयं में भरो, कलम में भरो। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का। अब मैं आपके सामने उस महान व्यक्तित्व को लाने जा रही हूं जो देश के प्रख्यात पत्रकार, संपादक, अकादमिक प्रबंधक और मीडिया प्राध्यापक रहे। अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का आपने वहन किया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 15 वर्षों तक जनसंचार विभाग के आप अध्यक्ष रहे, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, प्रभारी कुलपति रहे। वो महान शख्सियत हमारे हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आप भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में भी पूर्व महानिदेशक रहे। वर्तमान में मूल्यानुगत मीडिया समिति के आप अध्यक्ष, अनेक पुस्तकों का आपने लेखन एवं संपादन किया है। ऐसी महान विभूति से मेरा अनुरोध है कि अपने भाव हमारे मध्य रखें। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी आएंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभा के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई जी, सभा के माननीय अध्यक्ष, 86 साल के युवा आदरणीय बीके करोड़ा जी, जिनके मार्गदर्शन में मीडिया विंग का काम निरंतर आगे बढ़ रहा है, देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण के समूह संपादक माननीय विष्णु त्रिपाठी जी, माननीय विधायक और पत्रकार संपादक अरुण गोपाल शर्मा जी, बहन सरला जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मानसिंह परमार जी, राजयोगिनी बीके सुदेश जी, बहन बीके सीलू जी, बीके चंद्रकला जी, भाई बीके कोमल जी, इस सभा में उपस्थित सुशांत जी, शांतनु जी, भोपाल से पथारी आदरणीय रीना बहन जी, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये साझा करते हुए कि हमारी सभा में देश के यशस्वी पत्रकार और संपादक और आईएमसी के पूर्व डीन और विभागाध्यक्ष रहे गोविंद सिंह जी भी हैं। एक सप्ताह पूर्व सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने आपको माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मीडिया सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, क्योंकि हम सभा में सर हैं पर हम उन्हें जाने पहचाने। सर एक बार खड़े हो जाएंगे तो हमारे पत्रकार साथी आपसे मिल पाएंगे। आदरणीय गोविंद सिंह जी को बधाई भी देना चाहता हूं, सिर्फ इस नाते नहीं कि वे उत्तराखंड सरकार के मीडिया सलाहकार हैं, बल्कि मीडिया के क्षेत्र में उनका बहुत यशस्वी योगदान है। देश के अनेक समाचार पत्रों के आप संपादक रहे और आईएमसी के साथ आपका जुड़ाव रहा। बिजनेस स्टैंडर्ड के अस्तु सोझा जी भी यहां है, आप भी खड़े हो जाइए तो हम दिखा दें झांकी थोड़ी सी। उमानाथ सिंह जी डीडी न्यूज से यहां पधारे हैं, वरिष्ठ संपादक हैं। डॉक्टर राजेश राजौरी जी होंगे यहां पर, देशोन्नति बहुत बड़ा अखबार है महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का, उसके संपादक हैं। विकास मिश्रा जी अभी थे, चले गए हैं। विकास जी भी आज तक के दिनों में बहुत ही जबरदस्त इनका योगदान रहा, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी और बहुत सारे लोगों की नौकरियां ली, ऐसे विकास मिश्रा जी। और आप इस सभा में सभी उपस्थित हमारे मित्र, साथी, सहयोगी भाइयों और बहनों, बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि हम सब आज यहां इकट्ठे हैं। और परमपिता परमात्मा के धाम में जाना आसान नहीं होता है, कई कई बार प्रयास करने पे आप नहीं जा पाते। जैसे रूसी परमार जी हमारी सहयोगी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में इनके पिताजी निरंतर आते हैं, पर वो पहली बार आप पधारी, आपका भी स्वागत है। लोगों से कहते हैं आप भगवान के यहां जाओगे, आदमी कहता भाई अभी हमारी उम्र नहीं हुई, हमें नहीं जाना। कोई भगवान के यहां जाना नहीं चाहता, लेकिन आबू एक ऐसी जगह है गोपाल नारसन जी जहां आदमी बार बार आना चाहता है, क्योंकि उसको पता है यहां से वो वापस जा सकता है, यहां से उसकी वापसी की संभावना है, और इसलिए आपको आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। सितंबर में भी आइए, मई में भी आइए, दो बार तो मीडिया कर्मियों के लिए ये सुंदर जगह आपका इंतजार करती है। हम लोग आज मीडिया के माध्यम से विश्व शांति के बारे में बात करने वाले हैं। मीडिया में ऐसा क्या है कि वो शांति ला देगा? क्या दम है कि वो शांति ला सकता है? जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि ताकत बहुत बड़ी, मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, कि संवाद की जो शक्ति है, संवाद की जो ताकत है, दुनिया में कोई ताकत नहीं। बड़ी से बड़ी समस्या अगर हल की जा सकती है तो संवाद से हल की जा सकती है। युद्ध इसलिए होते हैं कि संवाद नहीं होता, और युद्ध समाप्त इसलिए होते हैं कि संवाद प्रारंभ हो जाता है। बड़े से बड़े युद्ध जो समाप्त हुए वे भी संवाद के कारण समाप्त हुए। चर्चाएं हुई, चर्चाओं से निष्कर्ष निकला और लगा कि युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर संवाद का रास्ता अपनाया गया और बड़े से बड़े युद्ध समाप्त हो गए। और आपने देखा महाभारत जैसा युद्ध से इसलिए लड़ा गया कि संवाद के लिए दुर्योधन तैयार नहीं था। उसने कहा सूचा ग्राम न दास्यामी विद्ध युद्धेन केशवा, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और इसलिए संवाद समाप्त हो गया तो युद्ध हो गया, परिवारजनों के बीच युद्ध हो गया, परिवार का सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर की पीड़ा को समझिए, वो युद्ध जीतकर भी दुखी है क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि युद्ध का समय नहीं है, और अगर युद्ध का समय नहीं है तो समय किस चीज का है? तो समय संवाद का है, समय कम्युनिकेशन का है। अगर हम लोगों के मन में संवाद और सुसंवाद की यात्रा प्रारंभ कर सके तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज परिवार से लेकर के राष्ट्र और समाज का जो विघटन है वो सिर्फ संवाद न होने के नाते, प्रेम विवाह करने वाले लोग भी 6 महीने तक एक छत के नीचे नहीं रह पाते, इस प्रकार के संकट खड़े हैं। आप परिवार अदालतों में जाइए, जिलों की अदालतों में जाइए, छोटे शहरों में जाइए, परिवार अदालतें करा रही हैं मुकदमों की मार से। किसके बीच में है? पति पत्नी के बीच का मुकदमा है, किसी और के बीच का नहीं। मैं भी ग्वालियर गया था, मैंने पता किया 17-18 हजार मुकदमे लगे हुए। बेंगलोर में गए, शादी कर ली, अब मुकदमे लड़ रहे हैं, बेंगलोर से लड़का आ रहा है, इधर से लड़की आ रही है, और घर तबाह हुआ है। ये सिर्फ संवाद न होने के नाते है, और इस नाते मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। पर मीडिया को भारत के आधार पर खड़ा करना पड़ेगा। भारतीय आधार क्या है? भारत का जो आधार है वह संचार और संवाद की परंपरा है, जिसमें समस्याओं का हल प्रश्नों के माध्यम से खोजा जाता है। हमारे शास्त्रों में प्रश्नों के माध्यम से हमने हल खोजे, वो पूरी उपनिषद की जो यात्रा है, पुराणों की यात्रा है, प्रश्नोपनिषद है भी है हमारे पास, जहां वो सवाल कर रहे हैं और ऋषि उसके उत्तर देते हैं। सही सवाल पूछना, सही वक्त पर पूछना, सवाल कैसे पूछना, यह भी हमको सीखना है। हमारी ऋषि परंपरा हमको प्रश्न करना भी सिखाती है, कैसे प्रश्न करना, पर हम प्रश्न भी नहीं कर पाते। कई बार हम चिढ़ाने के लिए प्रश्न करते हैं, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं, प्रश्न हमेशा जिज्ञासा को शांत करने के लिए होते हैं। और क्योंकि पत्रकारिता की जो पूरी यात्रा है वो प्रश्नाकुलता से ही प्रारंभ होती है, जिस दिन प्रश्न समाप्त हो जाएंगे पत्रकारिता भी समाप्त हो जाएगी। सवाल उठाना हमारा काम है, पर सवालों को कैसे उठाना, सवालों को कैसे लिखना, और इस नाते पत्रकारिता को एक आध्यात्मिक आधार से जोड़ना पड़ेगा, उस संचार और संवाद की जो भारत की परंपरा है उससे जोड़ना पड़ेगा। आज हम कहां जा रहे हैं? आज हम संवाद के बजाय विवाद पर जाते हैं, संवाद के बजाय वितंडावाद पर जाते हैं। और जब आप वितंडावाद रचना चाहते हैं तो समस्याओं का सवाल हल नहीं होता, बल्कि समस्याएं और विकराल रूप में सामने खड़ी होती है। मैंने कैसे मित्रों को जानता हूं, मैंने विष्णु जी, जो एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं, एक गाड़ी में बैठकर के चैनल के ऑफिस में, मानिए चैनल पे वो होनी, चर्चाएं होनी है, एक गाड़ी में कांग्रेस बीजेपी दूसरे दलों के प्रवक्ता बैठ के जाते हैं, हंसते मुस्कुराते बात करते हुए, फिर चैनल के जैसे खिड़कियां खुलती हैं, 8 फ्लोर खुलते हैं, वो जैसे लगते शत्रु हैं, भारत पाकिस्तान बन जाते हैं। मैंने आज तक किसी चैनल पर किसी प्रवक्ता को कहते नहीं सुना कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं अपने आप में सुधार करूंगा, कोई नहीं कहता। हमारी परंपरा यह है, जगत गुरु कहते मैं सीख के आऊंगा फिर बहस करूंगा, मैं पढ़कर के इस विषय में मुझे जानकारी नहीं, मैं थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ाऊंगा फिर आके बात करूंगा आपसे, हम ऐसा नहीं कहते, हमने असहमति को अपना सौंदर्य बना लिया है और इस नाते समाज के प्रश्न वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और आप देखिए, नवाज देवबंदी साहब लिखते हैं, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। और इसलिए हमें करना क्या है हमें पता है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। जानी जान नर करे ढिठाई, हम सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजाने बनना चाहते हैं। और इसलिए अगर जगतगुरु बनना है तो जगतगुरु हर क्षेत्र में बनना है, सिर्फ आर्थिक प्रगति के आधार पर नहीं बनना है। हमें अपने मीडिया में भी इस प्रकार के तत्व लाने पड़ेंगे जो हमें जगतगुरु बनाते हो। आत्मा के सत्य को जाने बिना गुरुता संभव नहीं है। और इस वातावरण में एक हमेशा एक औपनिवेशिक मानसिकता हमारे अंदर हावी रहती है, जिसके नाते हमें लगता है कि अपने मुल्क में अजनबी हो गए हैं। जैसे मुझे लगता है कि मैं शिक्षा के केंद्र में हूं, पर क्या मैं शिक्षित हो रहा हूं या मैं शिक्षा दे रहा हूं। वहां लगता है कि दुकानें चल रही हैं, पराई सोच और पराई भाषा ने हमारे मौलिक ज्ञान को ढक लिया है, इससे हमें दूर होने की जरूरत है। मैं न्याय के लिए न्यायालय जाता हूं, मुझे वहां न्याय नहीं मिलता। मैं लोकतंत्र में हूं पर यहां ढंग का प्रजातंत्र भी नहीं है, राजा की जगह हमारे लोग बैठे हुए हैं पर पराए लगते हैं। हम एक लोकतंत्र का स्वांग कर रहे हैं पर इस लोकतंत्र में जो उसकी आत्मा है क्या, इसको हमको विचार करना पड़ेगा। और इसका कारण यह है कि जो कुछ भी हमारे स्वभाव की सहजता के विपरीत कहा जाएगा उस दुनिया में मैं हमेशा अजनबी की तरह रहूंगा। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी बहुत कानून तोड़ते हैं, कानून का सम्मान नहीं करते। ये कानून हमारे लिए बने नहीं है, ये हमारे स्वभाव के विपरीत है, इसलिए हम इसको तोड़ते हैं। आईएएस अफसरों की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो सिविल सर्विस डे के दिन, गोविंद जी ध्यान होगा आपको, 2015 के सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नए नए बने ही थे, उन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईएएस अफसरों से कहा कि आपका काम है चीजों को अटकाना, भटकाना और लटकाना। और इस नाते देश की प्रगति चाहे अनचाहे रोकी गई। भारत में लोग कानून का सम्मान नहीं करते इसलिए कि वो कानून उनके लिए नहीं है, इसलिए बहुत सारे कानून भारत की सरकार ने समाप्त किए। और स्वामी विवेकानंद हमें इस दायित्व बोध को याद दिलाते हैं, इसे पत्रकारिता की बात नहीं है, ये भारत की बात है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दुनिया में संपूर्ण विश्व को देने के लिए भारत के पास अपना एक विशेष संदेश है, देना भारत का कर्तव्य है और देते जाना भारत की नियति है। और इसलिए कम्युनिकेशन के जो साथी हैं, पत्रकारिता के जो साथी हैं, उनको अपने कठिन दायित्व बोध को स्वीकार करना पड़ेगा। ये दायित्व बोध स्वामी विवेकानंद हमको देकर के गए, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हमें देना है। एक सार्थक संचार, एक सार्थक संवाद की दुनिया हमें बनानी है। और आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री रहे माननीय राजीव गांधी जी ने 1985 में कहा, दुनिया वालों, भारत को अगर आप जानना चाहते हैं तो केवल किताब पढ़ने से संभव नहीं होगा, भारत का जीवन आपको देखना होगा, भारत के जीवन की विविध लीलाएं आपको देखनी होंगी। इसलिए भारत का जीवन देखो, उसके बाद भारत को समझो। और इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतोत्सव की योजना बनाई एशिया के लिए, टोक्यो में, पेरिस में, रूस में आयोजन हुए। इसलिए भाषा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक संरचना के क्षेत्र में, पॉलिटी के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं, उससे धर्मपाल जी बड़े दुखी थे। और धर्मपाल जी की याद मैं इसलिए करना चाहता हूं, मुझे आपसे कहना है कि आप उनकी ब्यूटीफुल ट्री को पढ़िए। धर्मपाल जी कहते थे कि हमें अपनी रचनाएं खड़ी करनी पड़ेंगी, हमें अपने ढंग से काम करना पड़ेगा। धर्मपाल जी ये भी कहते थे कि शताब्दियों की गुलामी का झूठ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वे कहते थे, सच्चाई ये है कि भारत कभी गुलाम नहीं रहा, भारत सतत संघर्षरत रहा। हमें हमारी स्पृत भ्रष्टता से बचना पड़ेगा और ये काम मीडिया के साथियों को करना है। स्वीकार्यता से विश्व शांति संभव है। जो मूल्य जो श्रेष्ठ है, जो समावेशी है, जो विविधता और बहुलता को आदर करते हो, उन्हीं से भारत बना है। दुनिया को भी शांति चाहिए, दुनिया को भी सद्भाव चाहिए, तो भारत नहीं, भारत के मूल्यों को हमको अपनाना पड़ेगा। मीडिया की इसमें खास भूमिका है, तनाव कम करने में, संवाद बढ़ाने में। आज के मौके पर मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब विविध विचारों का आदर करें, सबको साथ लेकर के चलें। हमारा वायु पुराण कहता है, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, जातो जाते नवाचारा, नवा वाणी मुखे मुखे, यानी हर व्यक्ति की बुद्धि और सोचने का तरीका हमेशा अलग अलग होता है। और इसी तरह अलग अलग कटोरे में रखे दूध की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। इसी तरह अलग अलग पंथों की लोगों की जीवन शैली और रीति रिवाज अलग होते हैं। इसलिए हमें आनो भद्वा कर्तवंत विश्वता का अनुगमन करते हुए श्रेष्ठ विचारों का, जहां से भी प्राप्त हो रहे हैं, उनका अनुगमन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी साहब, आपने अनेकों का, बैठे हुए मुख्य लोगों का भी परिचय सबसे कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ते हुए आह्वान कर रही हूं आदरणीय राजयोगिनी संस्था की एडिशनल चीफ सुदेश दीदी जी को। आप बाल्यावस्था से ही समाज में, समाज की सेवा में रुचि रखती हैं। राजनीति में स्नातक की डिग्री दिल्ली के पंजाब विश्वविद्यालय से आपने हासिल की। आपको इच्छा रही आध्यात्मिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानवता की सेवा करने की। 1974 में सेवा के लिए आपको संस्था की तरफ से इंग्लैंड भेजा गया। 72 देशों से भी अधिक देशों में आपने भ्रमण कर ईश्वरीय सेवाओं की आप निमित्त बनी है। वर्तमान में आप संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं ज्ञान सरोवर की आप निदेशिका है। अगर मैं आपके लिए ये कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। दीदी के लिए कहती हूं, वो बोलते हैं तो जैसे वाणी में वेद हो, वो बोलते हैं तो जैसे वाणी में वेद हो, हर शब्द उनका जैसे परम तप का शेप हो, चलते हैं तो जैसे फरिश्ता हो आप इस धरा पर, चेहरे पर तेज ऐसा जैसे ज्यों रूहानियत से भरपूर हो, चेहरे पर तेज ऐसा ज्यों अलौकिकता का आप नूर हो। आदरणीय सुदेश दीदी जी, राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, तालियों के साथ मैं आह्वान करती हूँ, प्रेरणाओं के लिए हमें प्रेरणा देंगी सुदेश दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम शांति। मंच पर विराजमान मैं सबके नाम की माला तो नहीं जप रही हूं अभी, क्योंकि आपने अनेक बार नाम सुने हैं, परंतु हृदय से कहूंगी ये चुने हुए हीरों के हार को नमस्कार। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है, और मेरे सामने बैठे हुए जिनकी, जिन्होंने अपने पर हृदय से ये शुभकामना शुभ भावना रखी है, पत्रकार सिर्फ जॉब के लिए नहीं, परंतु समाचार समाज को ऐसा मिले जो उनके अंदर जो मनुष्य की चाह है, शांति है, सुख है, प्रेम है, पवित्रता है, एकता है, सत्यता है, उसका न केवल संदेश मिले परंतु वो उसका स्वरूप बन जाए। अब ये तो बिल्कुल सहज है कि अगर आग लगती है तो आग को बुझाने का ही ख्याल आता है, पानी ही याद आएगा। गर्मी होती है तो जरूर कोई ना कोई साधन लेकर, एसी ना हो पंखा हाथ में आएगा, पंखा नहीं होगा तो रुमाल या पत्ता लेकर के भी करेंगे, यानी ये ठंडक अपने को पहुंचाएंगे। जबकि समाज को हम देख रहे हैं, संसार को हम देख रहे हैं कि आज वो उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां पर समाचार आप सुन रहे हैं, शांति तो क्या, अशांति, 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 ओम शांति शब्द तो दूर हो गया है, शब्द रह गया है, और अशांति दिल में, मन में, डर के भय रूप में इतनी अंदर समा गई है। अभी आप सोचिए हमारे बच्चों का क्या सा, क्या क्या स्थिति होगी, जिस समय बुद्धि स्थिर नहीं है, हृदय में भय है, और हम उनको ठीक रास्ते पर चलाना चाहते हैं, उनको सुख शांति देना चाहते हैं, हम उनको क्या सौगात देंगे। तो पॉजिटिव न्यूज तो आप देंगे ही, जरूर आप ध्यान रखेंगे, परंतु मेरी एक ही शुभ भावना है, कहा है प्रेरणा के रूप में मैं कुछ बोलूं, इंस्पिरेशन दूं, तो मैं यही कहूंगी कि मीठे भाइयों बहनों, आप शांति के फ्लावर बन के जाओ। आपको मैं ये फ्लावर सौगात नहीं दे रही हूं, परंतु एक पांच पंखड़ी का फ्लावर आपको सौगात में देती हूं, जो आप अपने हृदय में अपने कॉन्शियस में इसका इसको प्लांट करके जाएं, तो पहले अपने आप के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके संबंधी और स्नेही के अंदर वो शांति की किरणें अथवा वो वातावरण फैले। क्योंकि जैसे ही फूल खिलता है गुलाब का, तो कहता नहीं है कि मैं खुशबूदार हूं, दिखाई भी नहीं देती खुशबू, पर सुगंध ऐसी है जो आपको टच करती है। हवा आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर ठंडी हवा आपको टच करती है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप ही पांच पंखड़ियों का फ्लावर बन के यहां से जाओ। वो पांच पंखड़ी का फ्लावर, फाइव पेटल्स, पीस के फाइव लेटर्स, पी ई ए सी ई, ये पांच है। शांति दूत बनने के लिए अथवा शांति का संदेश व स्वरूप बनने के लिए आप ही पीस फ्लावर बन गए तो विश्व में पीस होगी। क्योंकि एक ज्योत जगती अंधेरा मिट जाता है। तो अगर एक एक व्यक्ति अपने घर में इस प्रकार का स्वरूप बनाए, तो पी मतलब क्या, पॉजिटिव, हमारे विचार पॉजिटिव बने। और जहां पॉजिटिविटी है वहां पावर है, और जहां पावर है वहां प्योर फीलिंग है, और जहां प्योर फीलिंग है वो पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए पी फ्लावर को अपने अंदर, पीस का पहली पेटल अपने अंदर, अपना रूप अपने स्वरूप में बना लीजिए। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सहज है, क्योंकि पीस तो हमारा स्वधर्म है, शांति तो हमारा स्वधर्म है। भारत शांति दूत है, और आप हम सब भारत के लाल हैं। अगर हम शांति नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा? दूसरी पेटल है ई। ई एक्सरसाइज की बात है, मांगने की बात नहीं। शांति दो हे भगवान, शांति दो, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, शांति रापा, शांति रोच दया। तत्व तो पीछे शांत बनेंगे, पहले तो हम शांत बने ना। हम तो चैतन्य हैं, शांति चैतन्यता है, शांति आत्मा की अनुभूति है। इसलिए बार बार ये एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं, और इन ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों से शांति का संदेश देने वाली आत्मा हूं। एक्सरसाइज चाहिए, और शांति कोई बाहर से खरीदने की चीज नहीं है, ये एक्सपीरियंस को बढ़ाने की चीज है। तो ई फॉर एक्सपीरियंस, ई फॉर एक्सरसाइज, और इसकी एजुकेशन चाहिए कि परिस्थिति में स्वस्थिति हम कैसे बनाएं, और उस स्वस्थिति में कैसी भी परिस्थिति है, अपने आत्मिक स्वरूप में अंधकार में लाइट याद आएगी तो लाइट स्वरूप बन करके हम आत्माएं उसका स्वरूप बनने के लिए ये परिस्थिति से कुछ सीखें, सावधान होवें। तो ई फॉर एजुकेशन, कोई बात कहां रॉन्ग मैसेज जा रहा है, फौरन उसको करेक्ट करें और राइट रूप में प्रैक्टिकल लाएं। और पीस कोई जंगल में जाने से नहीं है, पीस सिर्फ वार खत्म होने की बात नहीं है, पीस तो एक्शन में रहते हुए, कर्म करते हुए, घर में रहते, परिवार में रहते, संसार में रहते शांति का व्यवहार चाहिए, प्रेम का व्यवहार चाहिए। जहां धीरता है, धैर्यता है, प्रेम है, वहां शांत वातावरण है। तो पीस फॉर एक्शन, पी फॉर एक्शन। जंगल में जाने की बात नहीं है, पी फॉर ए फॉर एप्रिसिएशन. आपके पास जो भी बातें पॉजिटिव हैं और दूसरे के पास जो पॉजिटिव है एप्रिशिएट भी करें, और कोई चीज नहीं पॉजिटिव है एक्सेप्ट करके उनको हेल्प करें करेक्ट करने की अथवा ट्रांसफॉर्मेशन की. और फिर रिजल्ट क्या होगा, आपका ही फ्लावर मन जो है चौथी पेटल कूल और काम. सी फॉर कूल एंड काम. तो शांति वो शीतलता और शांति स्थिर स्थिति में आपकी देखने की ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी. शब्दों की शांति नहीं, हृदय की शांति है, अनुभव की शांति है, व्यवहार में शांति है, वातावरण में शांति है. तो कूल माइंड जब होगा तो करे जाएगा राइट काम करने का, शक्ति आएगी अशांति को खत्म करने की. लाइट पानी में पावर है आग को खत्म करने की. और करेज और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यह हमारा स्वधर्म है, शांति मेरा धर्म है, शांति हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भारत की चिड़िया सोने की चिड़िया काली नहीं थी, शांति की चिड़िया है अथवा शांति का स्वराज हमारे भारत में था, सुख शांति पवित्रता का ताज था. और ई फॉर है इजी एंड एवरीथिंग, प्योरिटी पीस प्रोस्पेरिटी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस. और वो है आत्मा की एनलाइटनमेंट एनर्जी. अपनी अंदर की एनर्जी को अवेकन करने की जरूरत है. और वो परमपिता परमात्मा अभी ज्ञान के सागर, ज्ञान सूर्य परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप हम सब की ज्योति जगा रहे हैं. और मेरी यही भावना है कि इस प्रकार से फाइव पेटल का पीस फ्लावर एनलाइटन लाइट हाउस माइट हाउस बन करके आप जाए. पत्रकार हैं, मीडिया है, कार्य वो करते रहे, परंतु लाइट हाउस और माइट हाउस शांति के दूत जाकर के इसमें विश्व में संदेश दे. पर पहले स्वयं को संदेश स्वरूप बनाए और परिवार को ऐसा बनाए, ऐसी मेरी शुभ भावना है. ओम शांति, ओम शांति.
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का. बहुत सुंदर सटीक पीस का अर्थ आपने हमें दे दिया. पीस माना क्या, क्या क्या अपने अंदर में लेकर के आना है, पॉजिटिविटी को लाना है, एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, एजुकेशन और एक्सरसाइज ये पीस की लानी है, एप्रिसिएशन करना है, कूल एंड काम माइंड रखना है, इजी फॉर एवरीथिंग बनना है. और हम हमारे कदम हम बढ़ा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य की ओर, और वो है दीप प्रज्वलन की ओर हम कदम बढ़ाएंगे. कैंडल लाइटिंग सेरेमनी होगी और मैं सभा में से अनुरोध करूंगी जितने हमारे स्पीकर्स बैठे होंगे वो मंच के नीचे दीप प्रज्वलन में सहयोग देंगे. और हमारा मंच बीच में मंच पर आएगा और दीप प्रज्वलन के कार्य में सहयोग देंगे. और साथ ही साथ सभा में से मैं कुछ लोगों को ऊपर बुलाना चाहूंगी, और वो हैं शांतनु भाई जी, सुशांत भाई, निकुंज भाई, आत्म प्रकाश भाई, वो मंच पर हमें सहयोग देंगे. और ये दीप प्रज्वलन का कार्य कहते हैं हर दिल में उजाला हो जाए ऐसी प्रेम और करुणा की आओ हम लौ जगाएं. दीप की लौ ही चारों तरफ एक प्रेम का वातावरण तैयार करती है. जब दीप जगते हैं मन को आनंदित करते हैं. ऐसे दीप जगाकर हम अपने मन को शांति और प्रेम सद्भाव से भरते हैं. तो दीप की लौ भी बहुत कुछ सिखाती है. आओ लौ से सीख लें आज कुछ, हर हाल में जलना होता है, आंधियां चाहे जैसी हों रास्ता तो खुद बनाना होता है. तो कदम बढ़ाते हैं दीप प्रज्वलन की ओर मंच आगे बढ़ रहा है। सभा में उपस्थित हमारे स्पीकर्स मंच के नीचे अपना सहयोग देंगे, ध्यान रखेंगे नीचे ही सहयोग देंगे। कुछ जनों को मैंने ऊपर आमंत्रण दिया है, वही मंच पर आएंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
बहुत सुंदर ये दृश्य दीप प्रज्वलन का। मैं अनुरोध करूंगी जो हमारे मंच के नीचे दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आगे का कार्यक्रम उसको बढ़ाया जा सके। ये दीप जग चुके हैं और अब हम अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी ध्यान देंगे, बढ़ते जाएं, स्थान ग्रहण करते जाएं। मैं आगे अनुरोध करने जा रही हूं, हमारे मध्य प्रभु के अनुभवी रतन एक आवाज में इस प्रभु दरबार में हाजिर होने वाले, सदा सहयोग का कदम, सहयोग का हाथ बढ़ाने वाले, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ऐसे वो हमारे आदरणीय भ्राता राज्य मंत्री, राजस्थान के महत्वपूर्ण मंत्री, जिन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां और भूमिकाएं निभाई हैं। आप विश्नोई उद्योग और वाणिज्य, खेल और युवा मामले, कौशल और रोजगार एवं उद्यमिता और नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभालते हैं। आप दिसंबर 2023 में राजस्थान के विधानसभा के आप सदस्य बने, जो कि गुड़मलानी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके पास भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के राज्य सचिव के रूप में कार्य आपने किया है। आपकी कार्य कौशलता ये संगठन को आगे बढ़ाने में दर्शाता है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपनी भावनाएं रखेंगे हमारे मध्य आदरणीय राज्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है अपने विचार रखें।
आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सर्वप्रथम सबको मेरा नमस्कार, ओम शांति। जैसा कि और आप और हम सब साक्षी हुए आज इस कार्यक्रम के, अति सम्मानित मंच, अति सम्मानित ज्ञान सरोवर का ये प्रांगण, विभिन्न क्षेत्रों से मीडिया जगत के गणमान्य बंधु, इस मंच की शोभा बढ़ा रहे जयपुर में सिविल लाइन से विधायक और विधानसभा में हमारे बड़े भाई परम सम्माननीय, जो कि पत्रकारिता जीवन से ही आते हैं, आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, आप सबने हमने राजयोगिनी दीदी मोहिनी जी का भी कार्यक्रम की शुरुआत में संदेश सुना, बहुत ही शानदार अपनी दीदी श्वेता जी ने भी अपना प्रदर्शन किया, सारला बहन ने, हमारे परमार साहब ने, हमारे द्विवेदी जी ने, और अभी अपन सुन रहे थे परम सम्मान्य दीदी सुदेश जी को भी। यहां पर उपस्थित अलग अलग राज्यों से, अभी द्विवेदी जी ने परिचय भी करवाया था, परम सम्मान्य सभी पत्रकार बंधु मंच पर विराजमान हमारे कोमल भाई साहब, आपके और हमारे बीच में मृत्युंजय जी, उनको अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना पड़ा, वो भी अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन देकर के गए। यहाँ पर विराजमान शैलू जी, हमारी परम सम्मान्य बहन जी, यहाँ पर विराजमान त्रिपाठी जी, हमारे भाई करुणा जी, सभी सम्मानित मंच और यहाँ पर इस प्रांगण में विराजमान अति सम्मान्य सभी, इस शांति के संदेश को आगे बढ़ाने में मीडिया का जो नेशनल मीडिया का जो ये कॉन्फ्रेंस और ये सम्मिट रखी है, इसके अंदर यहाँ पर सभी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, सबका मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सिरोही जालौर जिले का प्रभारी मंत्री का दायित्व भी मेरे पास है, तो सदैव मेरा यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों में आने जाने का मेरे को सौभाग्य भी प्राप्त होता है। विश्व के हृदय में आत्मचेतना से प्रकाशमान करने वाले ब्रह्मा कुमारी संस्थान किस दिव्य भूमि को मेरा प्रणाम। विश्व के अंदर इसका आज एक बहुत बड़ा संदेश है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान केवल एक संस्थान ही नहीं, मानव जीवन की सर्वोच्चता का पर्याय है। आपने मात्र नेतृत्व स्त्री नेतृत्व को आध्यात्मिक नेतृत्व में बदलकर विश्व में एक नई चेतना दी है। यहां पर बहुत छोटी उम्र के अंदर भी मेरा निजी अनुभव है कि मैं यहां पर टूरिस्ट के रूप में भी आया हूं, तब भी मैं यहां पर आपके इन कार्यक्रमों के अंदर एक भक्त के रूप में एक नई दिशा कैसे मिल सके, मैंने आपके काफी कार्यक्रम यहां पर अटेंड भी किए हैं। ये क्योंकि आज मैं आपके इस मंच से बोल रहा हूं, तो पहले कभी भी इस बात की चर्चा भी नहीं हो पाई, तो मैं बड़ा खुद को सौभाग्यशाली धन्य महसूस करता हूं कि मैं आपकी संस्था से बहुत लंबे समय से जुड़ा भी हूं और यहाँ पर एक जो सुकून है, जो एक आत्म शांति महसूस होती है, एक आत्मचिंतन करने का एक जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने सबको दिया है, वो भी बड़ा विचारणीय है, बड़ा एक लंबा संदेश है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, आज का अपना विषय मीडिया बंधुओं के मार्फत जो विश्व को एक संदेश होना चाहिए, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, अभी अपन सबके सामने वैश्विक कई तरह की चुनौतियां, चाहे वो जलवायु की लेकर के अपन चर्चा करें, अपन ने, आपने और हमने सब ने आज से लगभग 30-32 वर्ष पूर्व क्लाइमेट चेंज की चर्चा कोपेनहेगन की धरती डेनमार्क से अपन ने सुनी। हर वर्ष अलग अलग जगह पर इसकी चिंता के लिए, बदलते हुए इस मौसम की प्रक्रियाओं में कैसे अलग अलग देश का एक सकारात्मक रुख हो सकता है, कैसे इसके लिए एक चिंता करी जा सकती है, कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए अपने को चिंता करनी है, इसमें मीडिया के बंधुओं का बहुत बड़ा रोल भी रहा है, उन्होंने इसकी एक प्रबल भूमिका भी इन्होंने निभाई है। अपन रूस और यूक्रेन जैसे अभी युद्ध, इजराइल और हमास जैसे युद्ध, ये सारे वैश्विक मुद्दे हैं, और मीडिया ने एक जन चेतना और एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में इस इन सब कामों में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। आपने और हमने इसको देखा भी है। मीडिया ने केवल खबर नहीं, सिर्फ एक न्यूज ही नहीं है, समाज को एक अलग दिशा देने में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपने और हमने आज से ठीक पांच वर्ष पूर्व वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी को आपने और हमने सबने झेला भी है, देखा भी है, महसूस भी किया है, अपनों को खोया है, अपनों को अपनों से दूर देखा है, लेकिन उस समय मीडिया के बंधुओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे उसमें मीडिया हो, चिकित्सा हो, इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल हो, समाज के अंदर काम करने वाले, चाहे मैं ब्रह्मा कुमारी इसके हमारे भाई बहन है, इनका भी उस समय बहुत बड़ा प्रभावी रोल रहा था, बहुत मदद मिली थी समाज के लोगों को उस समय बहुत विकट परिस्थिति जो इस कालखंड के अंदर आपने और हमने सबने देखी भी, महसूस भी करी। देश के अंदर जैसा कि आप और हम सब जानते भी हैं, लगातार तीसरी बार हमारे देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर भी रहे हैं, और एक नई दिशा भी दी है, देश को अर्थव्यवस्था में जो 11वें पावनदान से जीडीपी को 11वें से 5वें पर और 5वें से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। आने वाले समय में जापान और जर्मनी जैसे विकसित देश से भी भारत की अर्थव्यवस्था आगे निकल जाए, इसके लिए दिन और रात प्रधानमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं। मैं जिक्र इस मौके पर करना चाहूंगा हमारे राजस्थान प्रदेश का भी, एक अल्पकालीन 16 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा दिन और रात मेहनत भी कर रहे हैं, प्रदेश के जनता के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए शानदार जानदार बजट तो दिया ही उन्होंने दो बार, 4,90,000, 5,37,000, लेकिन एक राइजिंग राजस्थान जैसा बहुत ही अति महत्वपूर्ण उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, और उस कार्यक्रम को, वो ग्लोबल समिट थी, विश्व के लोगों ने यहां पर आकर के कोलैबोरेशन किया राजस्थान की गवर्नमेंट के साथ, अपना निवेश किया, यहां पर 35,00,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए राजस्थान प्रदेश की सरकार के साथ में, 3,00,000 करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके हैं, और इन सबको सफल करने के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया के बंधुओं का इसके अंदर बहुत ही सकारात्मक रुख रहा, तभी ये संभव हो पाया, उन्होंने ही ये एक माहौल बनाया तभी ये संभव हो पाया, चाहे वो अपन सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मेरा सबको तय दिल से धन्यवाद भी है, मेरा एक आभार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, कि उन्होंने ऐसे जो आने वाले समय में प्रदेश की दिशा और दशा दोनों सकारात्मक दिशा की तरफ एक स्पीड पकड़ेगी, एक तेजी पकड़ेगी, ऐसे पुनित कार्य के अंदर आप लोगों का एक बहुत ही सकारात्मक रुख रहा। मैं आपको जिक्र भी करना चाहूंगा, आज लगभग देश की 50% आबादी, वैसे तो भारत की 70% आबादी, जो गांवों के अंदर, कहा जाता है कि भारत की आत्मा, असली आत्मा गांवों के अंदर बसती है, और 50% आबादी जो लगभग कृषि के ऊपर आधारित भी है, और सिर्फ जानकारी के अभाव में किसान मुनाफा भी नहीं कमा पाता है, कर्ज के जाल में फंस जाता है, आत्महत्या जैसे वो कदम उठाता है। तो किसानों के लिए सरकार की योजनाओं को, कृषि आधारित ज्ञान को, क्लाइमेट चेंज के साथ कृषि में बदलाव जैसे विषयों को, मीडिया के भाइयों से मेरा आग्रह है कि यदि किसानों तक ऐसे विषय भी वो अन्नदाताओं को पहुंचाएं तो उसका आने वाले समय में काफी अच्छा, लगभग 50% आबादी के लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। ये ऐसा एक मेरा व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी है आपसे। मैं जिस क्षेत्र से, सीमांत जिला बाड़मेर जैसलमेर जहाँ से मेरा कर्म क्षेत्र है, गुड़ामाला ने विधानसभा से मेरे को वहाँ की जनता ने विधायक बना करके विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, उनका आभार, उनका धन्यवाद। पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर किसान जो उनका जीवन जो चल रहा है वो खेती आधारित ही है, उनकी आजीविका के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी समय परिवर्तनशील है। अभी देखते ही देखते वहां पर तेल के, गैस के, लिग्नाइट के खनन के कार्य चालू हैं। आज शुभारंभ किया कुछ वर्ष पूर्व आदरणीय मोदी जी ने पचपदरा में रिफाइनरी का, बहुत बड़ी रिफाइनरी इसी वर्ष में शुरू होने वाली है। तीन तीन रिफाइनरी को जोड़ने वाले एक बहुत बड़े भारतमाला का भी, जो अमृतसर जामनगर के बीच में पचपदरा, आज इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है, और आने वाले समय में कैसे वैश्विक स्तर पर भारत एक अलग तरीके से, एक अलग पहचान बना करके आगे बढ़े। आज एक फिर से सोने की चिड़िया के रूप में, फिर से विश्व गुरु के रूप में भारत कैसे अपनी एक पहचान बना पाए, इसमें भी मेरा आग्रह भी है, और आप लोग दिन और रात इसमें लगे हुए भी हैं कि कैसे मीडिया का आने वाले समय में, मोदी जी ने जो एक आज से ठीक दो वर्ष पूर्व जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, देश के अंदर एक कानून में भी परिवर्तन किया गया था, आप और हम सब जब भी विश्व के अंदर कोई भी देश में जाते थे, उनके घर के बाहर बालकनी में भी उनके देश के झंडे को अपन लहराते हुए देखते थे, लेकिन तब अपन सब भारतीयों के मन में ख्याल आता था कि हम अपने तिरंगे को भी कभी सरकारी भवनों के अलावा भी खुद के घर के ऊपर लहराता हुआ देखेंगे। तो कठोर कानून के अंदर परिवर्तन करके आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी संभव करके दिखाया कि आज आप और हम सब के घरों के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ अपन देख सकते हैं। तिरंगा रैलियां भी निकली, तिरंगा यात्राएं भी निकली, और जगह जगह पर सिर्फ भवनों पर ही नहीं, दूर दराज सीमांत जिलों में स्थित झोंपड़ों के ऊपर भी हमने तिरंगा लहराते हुए देखा। सिर्फ झोंपड़ों पर ही नहीं, मैंने तो वहां की बाड़मेर जैसलमेर के धोरों के अंदर खेजड़ियों के ऊपर भी तिरंगे को लहराते हुए मैंने देखा। ये संभव करके दिखाया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने आने वाले समय में 2047 का जो एक विकसित भारत का एक जो लक्ष्य आपको और हमको सबको दिया है, भारत कैसे विकसित हो और आने वाले समय में हम कैसे फिर से विश्व गुरु बन पाए, ये जो एक संदेश मोदी जी ने दिया भी है, और वो उम्मीद करते हैं सिर्फ आह्वान मात्र से संभव नहीं होगा, ये संभव होगा। आप सभी आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंदर आए हुए इस प्रांगण में, जो अपने अपने क्षेत्र के हाथ में कलम लेकर के और एक चित्रकार के रूप में किस तरीके से बातों को आप बढ़िया से समाज के अंदर पेश करते हैं, आने वाले समय में कैसे दूर दराज सीमांत इलाकों से लेकर के बड़े बड़े महानगरों तक हमारी इस आने वाली पीढ़ी की सोच कैसे विकसित हो, वो सब विकसित होगी तभी ये भारत भी 2047 में विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा पाएगा, विकसित भारत होगा। आप सब इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर आए, आप सब ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण समय को निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज आए, इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे ब्रह्म कुमारी परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी देता हूँ। और अपन सभी फिर इसी तरीके से अलग अलग जगह पर मिलते भी रहेंगे और अपने इस विचार को, ब्रह्म कुमारी के इस विचार को, शांति के विचार को, आत्मचिंतन को, इन सबको अपन आगे भी बढ़ाते रहेंगे। ऐसी मेरी आप सबको से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता कृष्ण कुमार विश्नोई जी, आदरणीय मंत्री राज्य सरकार। बहुत सुंदर भाव आपने हमारे मध्य रखे कि ये शांति की अलख हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे और हमारे बीच से हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी आज्ञा ले रही हैं, जा रही हैं। आपको आगे मेरठ की सेवाओं पे निकलना है तो आप हमसे इजाजत ले रहे हैं। आदरणीय सुदेश दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे बढ़ते हुए जो शांति की हमने बहुत देर से बात की है, शांति की शक्ति अपने अंदर लानी है, शांति की शक्ति इस वातावरण में फैलानी है, तो उसके लिए मैं आमंत्रण दे रही हूँ हमारे मध्य विराजित राजयोगिनी शीलू दीदी जी। आप बाल्यावस्था से ही ज्ञान में हैं, ज्ञान का अभ्यास, राजयोग का अभ्यास आप नित्य करते हैं, आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है और एजुकेशन पूरी करते ही आपने जीवन को समर्पित कर दिया। आप एजुकेशन विंग जो हमारी मुख्यालय की है, संस्था की, आप उसकी मुख्यालय कोऑर्डिनेटर हैं। एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड की आप सीनियर फैकल्टी हैं। आपने 70 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है और जी टीवी, सोनी टीवी, जागरण, पीस ऑफ माइंड पे आपके लेक्चर्स आते रहते हैं। आपकी ओजस्वी वाणी सुनते ही आप जीवन में घुल जाती है। आप जिस तरीके से बोलते हैं, आपको यहाँ संस्था की तरफ से बाबा ने स्वर कोकिला भी कहा हुआ है, तो आप बहुत मधुर वाणी से ज्ञान को जीवन में घोल देती हैं। अब आपसे अनुरोध है कैसे हम परमात्मा से मिलन बनाएं और शांति को प्राप्त करें, उसके लिए आदरणीय शीलू दीदी जी। और मैं देख रही हूँ हमारे मंत्री हमारे मध्य से आज्ञा ले रहे हैं, कृष्ण कुमार विश्नोई जी हमारे बीच से आज्ञा ले रहे हैं। आप सभी एक बार खड़े होकर के अपना सम्मान प्रस्तुत करेंगे और उनका सम्मान, आदरणीय मंत्री साहब का सम्मान भी हमारे करुणा भाई जी कर रहे हैं। सभी हम तालियों के द्वारा आपका सम्मान करते हैं। आपको शॉल पहना करके आपका सम्मान किया जा रहा है। हम ताली बजाते रहेंगे इस सम्मान के लिए और आपको ईश्वरीय सौगात परमात्मा का चित्र दिया जा रहा है। परमात्मा जहाँ है वहाँ सब समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ये चित्त शांत हो जाता है, शांति का पैगाम स्वतः फैलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं देती हूँ माननीय मंत्री महोदय को। हम सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और आदरणीय शीलू दीदी जी हमें परमात्मा स्मृति की ओर ले चले।
ओम शांति, सभी कहेंगे एक साथ प्यार से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वात्माओं के सद्गति दाता, परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारे महानुभाव तथा सभा में उपस्थित सभी मीडियाकर्मी बहुत ही सुंदर विषय पर यह सम्मेलन रखा गया है, वैश्विक शांति और सद्भाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की भूमिका। इस विषय पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ सुनाया है और साथ में ये भी कहा कि शांति कितनी आवश्यक है, परंतु शांति का अर्थ क्या है? शांति केवल युद्ध का न होना ही नहीं है, शांति केवल आवाज का अभाव होना ही नहीं है, लेकिन शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। शांति ये आत्मा का निजी स्वभाव है। शांति कोई बाहर से पाने वाली चीज नहीं है, शांति ये मन की स्थिति है। तो इस मन की स्थिति को अपनाने के लिए हमें क्या करना होगा? मन का तो काम ही सोचना होता है, तो शांति हमारी सोच में है। अगर हम पूछें कि शांति हमसे कितनी दूर है, तो उत्तर बहुत सिंपल है, केवल एक सोच की दूरी पर है। पर वो सोच संसार की बातों का नहीं, पर अंतर के संसार की बात है। शांति जो मन की स्थिति है वो एक पॉजिटिव चीज है, किसी नेगेटिव के अभाव की चीज नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये प्रकाश है, प्रकाश की हम परिभाषा ये नहीं देंगे, हम यही देंगे अंधकार का अभाव, पर वास्तव में अंधकार का अभाव ही प्रकाश नहीं है। हाँ, प्रकाश का अभाव अंधकार जरूर है, परंतु अंधकार का अभाव प्रकाश नहीं है, क्योंकि प्रकाश का स्रोत है, अंधकार का कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश का स्रोत सूर्य है, और इसी प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहते हैं। इसीलिए शांति का भी स्रोत है, क्योंकि वो शक्ति है, और वो स्रोत स्वयं आत्मा है, वो स्रोत परमात्मा है। इसलिए शांति आपको बाहर से नहीं मिलेगी, ये भीतर में आत्मा का स्वभाव है। तो जब हम कहते हैं कि सोच से ही अनुभव होता है, वो कौन सा सोच जिससे हमें शांति का अनुभव हो, उसी सोच को अनुभव करना ही शांति का अनुभव करना है, जो मेडिटेशन के द्वारा हम अनुभव करते हैं, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। जैसे हमारे मोहिनी दीदी जी ने बताया कि शांति हमें कैसे आ सकती है, जैसे युद्ध भी पहले मन से शुरू होता है, वैसे शांति भी पहले मन से शुरू होती है, और उसमें स्वयं को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, अपने कर्तव्य को पहचानना, ये शांति का उद्गम स्थान है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों इस संसार में आया, जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सारे जो मूल प्रश्न है आध्यात्मिकता के, इनका उत्तर मेडिटेशन के द्वारा मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शांति चाहिए तो भीतर जाएं। किसके भीतर जाएं? आत्मा के भीतर, जो मैं चेतन सत्ता हूँ, एक आत्मा हूँ, एक दिव्य ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ, तो मेरा ही मूल स्वभाव शांति है। शरीर का स्वभाव शांति नहीं है, शरीर का स्वभाव तो हलचल है, एक्शन है, लेकिन आत्मा का स्वभाव शांति है और वो सोच से ही आरंभ होता है। तो चलिए हम वो संकल्प मन में लाएंगे और शांति का अनुभव करेंगे। सीधा बैठेंगे, अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? अंतरात्मा स्वयं ही उत्तर देगी कि मैं इस देह में विराजमान एक चैतन्य सत्ता हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, आनंद स्वरूप हूं, सत्य हूं, मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं, परमात्मा की मैं संतान हूं, परमात्मा शांति के सागर है, तो मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूं। मेरा मूल स्वभाव शांति है। ये संसार एक रंगमंच है जहां मैं आत्मा अभिनय करने आई, पर मेरा मूल निवास स्थान शांति का धाम है। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। मेरा स्वभाव शांति, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा धाम शांति का धाम, तो मैं अशांत नहीं हूं। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाऊं, तो शांति मुझे उसी क्षण अनुभव होगी। शांति एक शक्ति है और इसी शक्ति से मैं स्वयं को शक्तिशाली बनाती हूं। मेरा मूल वतन शांति धाम है। मैं एक ही क्षण में मन और बुद्धि से अपने धाम पहुंच सकती हो। मैं आत्मा शांति धाम की वासी अपने मूल शांति के धाम में निवास कर रही हूं। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। एक सुनहरा लाल प्रकाश है। मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान उस परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूं। मैं शांत हूं, शांत हूं, शांत हूं। ओम शांति, शांति, शांति।
ये गहन शांति, ऐसा लगता है इसी में स्थिर रहें, मन शांत है, आंतरिक खुशी स्वतः स्वाभाविक जागृत होती है। चलिए इस अनुभूति के पश्चात कदम आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रण देना चाहूंगी हमारे मध्य विराजित डॉक्टर गोपाल शर्मा, जो कि विधायक हैं और साथ ही साथ आप ओनर और चीफ एडिटर महानगर टाइम्स जयपुर से पधारे हैं। आप सदी परिवर्तन, बदलते राजनीतिक परिदृश्य में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाले, राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले ऐसे सशक्त देश के लिए कार्यकर्ता, यूं कहूं राम जन्मभूमि की मुक्ति के महत्वपूर्ण संघर्ष के समय भी आप जनमानस को जागरूक करने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए बहुतों ने आपको आगे बढ़ते हुए कदमों को बधाई दी। आपने अशोक सिंघल जी ने भी आपको इस बारे में बधाई दी। 90 के दशक की घटनाओं के सकारात्मक कवरेज में से ही ऐसा माना जाता कि सिर्फ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यूं 4 दशक से आपके पास पत्रकारिता, लेखन, समाज सेवा का अनुभव है और 5,000 से अधिक रिपोर्ट्स, समाचार, विशेष रिपोर्ट्स आपके द्वारा प्रकाशित हुई। खोजपूर्ण पत्रकारिता में भी आपका विशेष योगदान रहा। आपके बारे में विशेषता का अगर मैं बात करूं तो आप निर्भीक हैं, कर्तव्य के प्रति आप समर्पित सदा रहते हैं, चाहे वो अयोध्या में गोलीबारी हो, पंजाब में उग्रवाद हो, कश्मीर घाटी में आतंकवाद हो, लेकिन आप सदा उसमें भी हिंसा के समय पर भी आप निर्भीक होकर अपना कर्तव्य करते रहे। तो ऐसे महान पत्रकार कहूं, विधायक कहूं, जिनके अंदर दृढ़ता है, कर्तव्य निष्ठा है, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपना विशेष हमें दिशा निर्देश देंगे। आदरणीय भ्राता श्री गोपाल शर्मा जी, विधायक।
मंच पर विराजमान सभी श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहां पर उपस्थित मीडिया से जुड़े हुए भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मैं हमारे आदरणीय श्रद्धेय दादा श्री लेखराज जी के प्रति अपना साष्टांग दंडवत और श्रद्धा समर्पित करते हुए उनका पावन स्मरण करता हूं। इस स्थान से मेरी बहुत गहरी यादें जुड़ी हुई हैं। दादी प्रकाशमणि जी से मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद मिला हुआ है। यहां के विकास के एक एक क्रम को संजोगवश देखा हुआ है और यह जब होल बना था तब भी आदरणीय राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उपराष्ट्रपति रहे माननीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत, और यहां पर पर्यटन मंत्री थी पुष्पा जी जैन, उनके साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे स्मरण है यहां प्रथम मंजिल पर दादी प्रकाशमणि जी का कक्ष था और उनके बगल में आधुनिक किचन बना था और उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक बताया था और मेरी भी आंखों में चमक वो स्टील के बर्तन देख करके बढ़ गई थी कि एक ऐसा स्थान यहां स्थापित होने जा रहा है जो पूरे विश्व में अपना असर स्थापित करेगा। हम लोगों का सौभाग्य है जब यह हॉल बना था तो ये भवन था, आज इतनी देर से मैं बैठा हुआ हूं, खोया हुआ था, इसमें आध्यात्मिकता का निवास है, इसमें पवित्रता का निवास है, इसमें पुण्याई का निवास है। मैं सोच रहा था तो मुझे दो ही स्थान याद आए। एक बार प्रभु की कृपा से सुबह 4 बजे केदारनाथ जी के गर्भगृह में बैठा हुआ था और एक बार कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस जी की जो साधना कक्ष है वहां पर ऐसी ही अनुभूति होती है जो यहां आकर के अनुभूति होती है। शांति और सद्भाव, वैश्विक शांति और सद्भाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की जो भूमिका है वो हम सब में से किसी से छिपी हुई नहीं है, सब उससे ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते हैं। हर एक की अपनी दुनिया है, हर एक अपने परिवार को चलाते हुए श्रेष्ठतम व्यक्तित्व का परिचय देता है, इसलिए जो केवल मार्गदर्शक हैं और जो बड़े हैं उनके रास्ते के ऊपर चलना, महाजनों ये न गतः सपन्था, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं 2-3 अनुभव साझा कर सकता हूं, समय का अभाव है, लेकिन 2-3 अनुभव साझा करना चाहता हूं। एक तो ये बताने के लिए कि मीडिया की शक्ति क्या है। शांति की तभी जरूरत है जब सामने शक्ति हो, और कितनी शक्ति है। मैं विधायक बनने के बाद किसी पार्टी का सदस्य बना, मैं सोचता था ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिले जो बाहुबली हो, जिसके पास धनबल हो और जिसके पास पूरा अर्थ बल हो। और प्रभु ने नाम दाखिल करने के एक दिन पहले मुझे सूचना मिली कि फलां जगह से चुनाव लड़ना है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो प्रदेश अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति को पिछली बार 20,000 वोटों से पराजित कर चुका था। तो केवल प्रभु की कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था कि जब मुझे कहा गया कि सिविल लाइन से टिकट चुनाव लड़ना है तो मैंने कहा 25,000 वोटों से पराजित करूंगा। 30,000 वोटों से पराजित किया। किसके कारण? प्रभु के कारण। प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी जो भूमिका है, केवल मैं वह तीन घटनाओं का स्मरण करके अपनी बात खत्म करूंगा। 4 सितंबर 1987 को दिवराला में सती हुई, सारी दुनिया के अंदर वो खबर फैली और स्थिति ये हो गई कि राजस्थान का राजपूत समाज एक तरफ उसको स्वाभिमान का विषय बनाए हुए था और शेष समाज दूसरी तरफ, और ये कह करके कि बढ़ती हुई सभ्यता के अंदर, सभ्य समाज के अंदर किसी भी स्त्री को जलाए जाना स्वीकार नहीं है। मैं उस समय राजस्थान पत्रिका का चीफ रिपोर्टर था। मेरे मन में केवल एक ही भाव थे कि समाज टूटना नहीं चाहिए, ये प्रभु की इच्छा थी। 95% राजस्थान पत्रिका थी, शेष 5% में अन्य मीडिया थी। राजस्थान के अंदर उसका असर ये हुआ कि जो सामाजिक संघर्ष था उसकी स्थिति नहीं बनी। दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं राष्ट्रीय स्तर की, वो है हमने अभी देखा कि राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। केवल मीडिया की भूमिका के कारण कोई भी खिलाफ नहीं बोला, कहीं पर भी अशांति पैदा नहीं हुई और सारा देश शांति और सद्भाव के साथ एकजुट रहा कि वह जो कार्य होने जा रहा है उसको सारे विश्व की तरफ से सहमति प्राप्त है। किसी भी देश के अंदर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, यह थी मीडिया की भूमिका। और तीसरी बात मैं एक आखिरी बताना चाहता हूं कि अभी नए वर्ष के ऊपर प्रभु की तरफ से ऐसा मन को प्रेरणा मिली कि बांग्लादेश जाना चाहिए। मैं बांग्लादेश गया, वहां जाकर के जो भी विवादास्पद जगह बना दिए गए थे, इस्कॉन के मंदिर वगैरह सारे, वहां के जो हिंदू थे उनसे मिला, वहां के विषय जाने। आपको मैं बताऊं कि कैसे शांति और सद्भाव रहता है, इसका उदाहरण बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो ढाका के अंदर 40 साल से पुस्तकों की दुकान चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत कोई भी कड़ाई हमको लेकर के बांग्लादेश के खिलाफ करे, कि भारत पहले है, हम लोग बाद में हैं, हम लोग अपनी स्थिति का सहन कर लेंगे, लेकिन भारत अगर विवाद में पड़ता है और ऐसी स्थिति बनती है जो भारत के खिलाफ जाती है, ऐसी चीज हम नहीं चाहते। यह है शांति और सद्भाव की भावना। जहां जर्रे जर्रे के ऊपर भय का माहौल है, दहशत का माहौल है, वहां पर अगर व्यक्ति यह सोच रहा है कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो कि भारत की स्थिति के खिलाफ जाती हो। अभी पहलगाम वाली स्थिति हम में से कोई भी अपरिचित नहीं है। आप देखिए सारा राष्ट्र किस तरह से एकजुट है कि इसको हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं बनाया जाए। कितनी बड़ी बात है ये, ये सिर्फ भारत कर सकता है। अगर और कहीं ये घटना होती अब तक दंगे फैल जाते, लेकिन भारत ने ये तय किया कि नहीं, ये हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है, यह आतंकवाद बनाम शांति का प्रश्न है। आतंकवाद के खिलाफ सारा भारत एकजुट है, लेकिन मुसलमान के खिलाफ नहीं है, इस समय नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है, महाजनों ये नगत असपन था।
हमको यही प्रेरणा मिली हुई है कि नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो सृष्टि के खिलाफ जाता हो, जो सृष्टि की शांति के खिलाफ जाता हो। सृष्टि सिमट रही है, हम लोग महसूस करें सृष्टि सिमट रही है। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य योनि प्राप्त होती है, ये हमने सुना है। हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर इतने बड़ा कृपा फल है कि हम इस धरती पर सांस ले रहे हैं। कम से कम हम अपनी भूमिका उस तरह की निभा के जाएं कि हमको ये लगे कि हम ऐसे पुण्य स्थान के ऊपर आए, ऐसे पवित्र स्थान पर आए, ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर आए, हम अपने साथ कुछ लेकर गए। तो हमारी आदरणीय प्रशासिका मोहिनी जी, राजयोगिनी मोहिनी जी, अभी राजयोगिनी सुदेश जी हमारे बीच में थी, हमारे अन्य सभी जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, समर्पित किया हुआ है। एक बार पुनः मैं हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जो करुणा की मूर्ति थी, उनको याद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं।
सौभाग्यशाली हैं जो आपको दादी प्रकाशमणि जी का सानिध्य मिला है। आगे भी आप संस्था के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, इसी उम्मीद और आशाओं के साथ धन्यवाद करती हूँ भ्राता डॉक्टर गोपाल शर्मा जी। और आगे बढ़ते हुए मैं आह्वान कर रही हूँ हमारे मध्य विराजित विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना हमें दिशा निर्देश देंगे। आप 3 दशक से भी अधिक इस लाइन में रिपोर्टिंग में जुड़े हुए हैं, आपने अहम भूमिका निभाई है एक सशक्त संपादक के रूप में, आप बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। आपकी विशेषता की बात करूं तो आप अनुशासन प्रिय, समय के पाबंद, धारदार एवं ओजस्वी लेखन आप रखते हैं, सशक्त नेतृत्व करता है, वक्ता है, सामाजिक गतिविधियों में आपकी काफी भागीदारी रहती है। आपने वर्ष 2022 में डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप अपने भाव रखेंगे।
मेरे परिचय में जो कुछ चीजें बताई गईं, तो उनमें से पता नहीं कुछ उचित हैं, सही हैं, कैसी हैं, मैं उस पर नहीं जानना चाहता। लेकिन ये कहा गया कि मैं समय और अनुशासन का बड़ा पाबंद हूँ, यानी ये मुझे निर्देश है कि आपके लिए पत्रक में जितना समय निर्धारित किया गया है उतना ही बोलना है। तो और ये भी कहा गया है कि मुझे निर्देश देना है, कुछ ऐसा शब्द प्रयोग किया गया कि मुझे निर्देश देना है, और मैं तो निर्देश देने की स्थिति में नहीं हूं। यहां पर हमारे आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर परमार साहब, IIMC के महानिदेशक हमारे भाई संजय द्विवेदी जी, और हमारे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, जिनसे हमने बहुत सीखा, आप लोगों ने सीखा। तो जहां ऐसे पत्रकारिता के गुरुजन विद्यमान हो, वहां पत्रकारिता का एक छोटा सा विद्यार्थी क्या निर्देश देगा? कोई निर्देश नहीं दे सकता। केवल चूंकि आपने बुलाया और इस योग्य समझा कि हम कुछ कहें, इसलिए। और एक चीज और है कि अभी वाइस चांसलर साहब ने याद दिलाया कि पिछली बार भी शायद सितंबर में मैं जब वहां आबू रोड वाले फंक्शन में आया था, तो सबसे वही आपने कहा ना कि सबसे अंत में आप ही को क्यों बुलाया जाता है, तो वो वहां पर भी सबसे अंत में और यहां पर भी, तो कुछ ऐसी व्यवस्था होगी और शायद आपने हमारे अंदर ऐसा कुछ देखा होगा कि इसको सबसे अंत में बुलाओ। तो वस्तुतः मैं तो ये सोचता हूं कि आप हमारे भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं और श्रोताओं के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों के धैर्य को प्रणाम करता हूं, और इसलिए धैर्य को प्रणाम करता हूं कि इतनी देर तक और ये बड़ा बड़ा कठिन होता है कि बीच बीच में ध्यान का भी अभ्यास हो, फिर ज्ञान का भी अभ्यास हो, फिर सम्मान का भी अभ्यास हो और फिर उसमें हम आ जाएं। तो वो अभी मैं देख रहा था, एक तो लोगों ने भरपूर भरपूर जो जलपान किया, स्वल्पाहार किया और उसके बाद यहां आकर के विराजमान हुए। मैं जर्नलिस्ट हूं तो थोड़ा फीचर भी ठीक है, तो यहां आकर के विराजमान हुए तो वातानुकूलन है, अच्छी स्थिति है, और फिर बीच में ध्यान का अभ्यास कराया गया और दीदी ने कहा ओम शांति शांति शांति। मैं कई लोगों की मुद्रा देख रहा था जिनके लिए कभी कभी ऐसे लिखते हैं ना, जब हम लोग समाचार लिखते थे कल तक ठीक ठाक थे शांत हो गए, तो ऐसी भी मुद्रा देख रहा था वो तो वो, और फिर भी उसके बाद इतना धैर्य बनाए रखना। और उसमें कई लोग मतलब जब ध्यान का अभ्यास नहीं था, ज्ञान का अभ्यास था, सम्मान का अभ्यास था, उस समय भी कई लोग चिंतन की मुद्रा में थे। अब मैं समझ नहीं पा रहा था वो चिंतन था या क्या था, क्योंकि सब लोग कह रहे थे चिंता मुक्त रहो चिंता मुक्त रहो, तो वो बिल्कुल चिंता मुक्त होने की स्थिति में थे। अभी मुझे ध्यान आया कि आरक्षण पर बड़ी गंभीर चर्चा हो रही थी लोकसभा में, बहुत गंभीर चर्चा हो रही थी, और उसमें टीवी पर तब लाइव नहीं आता था लेकिन बाद में न्यूज में विजुअल दिखाए जाते थे। तो जब आरक्षण पर चर्चा हो रही थी तो लालू जी सो रहे थे, सो ही रहे थे, तो बाद में उनसे किसी पत्रकार ने कहा कि आप तो आरक्षण के इतने हिमायती हैं और जब आरक्षण पर चर्चा हो रही थी तो आप सो रहे थे, तो जैसा लालू जी का अंदाज है उन्होंने कहा हम सो नहीं रहे थे, हम गंभीर रूप से चिंतन कर रहे थे। तो मैंने यहां पर कई लोगों को चिंतन करते हुए भी देखा कि जब वक्तव्य चल रहा था तो चिंतन हो रहा था। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा मेरा एक अंदाज भी है, मतलब एक स्वभाव है, मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूं लेकिन एक है कि थोड़ा सा कुछ इस तरह से आरंभ करें कि जो मतलब जो विशुद्ध रूप से चिंतित हो गए हो, चिंता में चले गए हो, चिंतन में चले गए हो, वो थोड़ा मेरे प्रति भी थोड़े से चिंतित हो जाए कि सबसे अंतिम में ये क्या बोलेगा। तो अब वो जो मैं ये देख रहा था कि ये सद्भावना सद्भावना, तो एक चीज मैं और बताऊं जो मेरे ध्यान में बात आई कि जब मैं इस कक्ष में प्रवेश कर रहा था वहां पर तो ये हुआ कि आपका स्वागत होगा, मतलब ऐसा बहने थी हमारी तो उन्होंने टीका लगाया और मुझे ये वाला उत्तरी पहनाया, ये वाला उत्तरी पहनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी जो मूल विचारधारा है, मेरी जो मूल वैचारिकता है, ये जो रंग है ये उसको परिलक्षित करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मंच पर आया तो मुझे ये पीले रंग का उत्तरी पहना दिया गया। आप जानते हैं कि पत्रकारिता में पीले रंग का क्या महत्व है, तो मुझे पीला रंग पहना दिया गया, तो पी तो पत्रकारिता हो गई। तो खैर तो ये है, खैर देखिए, और एक चीज और, ये जो सद्भावना का विषय है, तो जब आप खड़ी रहे, ये जो सद्भावना का विषय है ये वस्तुतः एक पक्षी नहीं है, ये द्विपक्षी है। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के हित चिंतक नहीं होंगे, शुभ चिंतक नहीं होंगे, एक दूसरे के हित की भावना से न्यस्त नहीं होंगे, उनमें ट्रस्टीशिप नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास और विश्वस्त नहीं होंगे, तब तक सद्भावना शब्द निरर्थक है, निरर्थक है, निरर्थक है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और इसलिए केवल मैं बार बार कहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि सद्भावना मात्र वक्तव्य का विषय है कि कृतित्व का विषय है, ये वस्तुता कृतित्व का विषय है। हम जब से पैदा हुए हैं हम सद्भावना शब्द सुन रहे हैं, सेमिनार में सुनते हैं, संगोष्ठी में सुनते हैं, कविताओं में सुनते हैं, वस्तुता सद्भावना वक्तव्य का शब्द नहीं है, सद्भावना कृतित्व का शब्द है। और चूंकि अपने पत्रकार बंधु हैं और चूंकि बहुत थोड़े से बचे हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि ये नवनीत क्रिया के उपरांत जब छाछ अलग हो जाता है और मात्र नवनीत बचता है, तो ये प्योर जर्नलिस्ट बचे हुए हैं। तो मैं एक शेयर करना चाहता हूं कि न्यूज रूम में अभी जब 22 या उसको जो पहलगाम की घटना हुई, तो उस पहलगाम की घटना में मैं थोड़ा सद्भावना पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूं। कैसी सद्भावना, किसके प्रति सद्भावना और क्यों सद्भावना, कैसी सद्भावना? तो जब पहलगाम पर अटैक हुआ और पहलगाम पर अटैक होने के दूसरे दिन शाम को दूसरे दिन, तो वो फोटो सिलेक्शन हो रहा था कौन कौन से फोटोग्राफ जाएंगे, तो उसमें एक फोटो था, एक फोटो था एक लोकेशन का, जिसमें कुछ लोग थे, बहनें थीं, भाई थे, और वो कैंडल मार्च कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे। तो मैंने अपने फोटो एडिटर से कहा कि तुमने ये फोटो क्यों सेलेक्ट किया, समझिएगा, मैंने कहा कि अभी क्योंकि इसमें पत्रकार एक अग्रदूत ऐसा करके उसकी, तो कैसा अग्रदूत होना चाहिए सद्भावना के लिए, पत्रकार को कैसा अग्रदूत होना चाहिए राष्ट्र की जब रक्षा का, और अपने अपने पंथ की और अपने अपने पंथ की और अपनी संस्कृति की रक्षा का प्रश्न हो, तो एक पत्रकार को कैसा अग्रदूत होना चाहिए। तो मैंने कहा कैंडल मार्च की फोटो के सिलेक्ट करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है। उसने कहा कि ये जो कैंडल मार्च है, ये जो मोमबत्ती का मार्च है, इसमें सद्भावना का संदेश है, शांति का संदेश है। मैंने कहा इस कैंडल मार्च का लक्षित वर्ग कौन है, कौन है ये जो कैंडल मार्च है, ये किसको सद्भावना का और शांति का संदेश दे रहा है, और आप फोटो प्रकाशित करके अपने समाचार पत्र में किसको देंगे, मेरी उस बिटिया को जो अभी 20 दिन पहले उसका विवाह हुआ है और पहलगाम में उसका सिंदूर पहुंच दिया गया, ये कैंडल मार्च उसको सद्भावना का संदेश दे रहा है, ये कैंडल मार्च उस पाकिस्तान को जहां से आतंक पोषित होता है भले ही वो जो कुछ कहे उसको संदेश दे रहा है, किसको संदेश दे रहा है, हमारी सेनाओं को सद्भावना का संदेश दे रहा है कि नहीं अपने जो तुम्हारे शस्त्र अस्त्र हैं उनको रखो और कैंडल मार्च निकालो, क्योंकि इसी में सद्भावना है। ये सद्भावना किसके लिए सद्भावना, आप किसको सद्भावना का इस कैंडल मार्च से संदेश दे रहे हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप संचार के वाहक हो, आप संदेश वाहक हैं, आप इस कैंडल मार्च से क्या संदेश देना चाहते हैं इस फोटो को छाप कर। वो जो मेरी विधवा बहन है या बेटी है, वो जब फोटो देखेगी, उसकी माँ, उसके सास ससुर, उसके परिवार के लोग उस इस फोटो से क्या संदेश लेंगे, वो कौन लोग हैं जो कैंडल मार्च निकालकर किस प्रकार की सद्भावना। सद्भावना हमेशा दो तरफा होती है, सद्भावना कभी भी एक तरफा नहीं होती है, और सद्भावना हमेशा शक्ति से उपजती है, हमेशा सदैव शक्ति से सद्भावना उपजती है। शांति पहले शक्ति की स्थापना होती है, फिर शांति की स्थापना होती है, फिर शांति के बाद सद्भावना उपजती है। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, उन्होंने चूंकि मैंने भी सोचा था कि इसका उदाहरण दूंगा, तो आप मैं महाभारत की पहले बात करता हूं। महाभारत में 18 पर्व हैं, हमारा सबसे आदि ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है जिससे गीता निकली है, 18 पर्व हैं, सभा पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, वगैरह वगैरह, ये सारे युद्ध कर्ण सारे युद्ध के पर्व हैं, सारे युद्ध के पर्व हैं जिनमें से अपनी गीता आती है, सब युद्ध के पर्व हैं, युद्ध होता है उसके बाद पांडवों का राजतिलक होता है, उसके बाद वो शांति का पर्व होता है, शक्ति की आराधना के बाद ही शांति का पर्व आता है, और फिर जब पांडव राजतिलक के बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अपनी वैचारिकता और अपनी विचारधारा का प्रक्षेपण करते हैं कि कोई भी अगर किसी को हमारी विचारधारा और वैचारिकता के प्रति, वैचारिकता आइडियोलॉजी के प्रति असहमति है, आओ युद्ध करो, वह वस्तुतः अनुशासन का पर्व होता है और वहीं से सद्भावना का पर्व आरंभ होता है। आप देखिए हम लोगों को बचपन से जो अभ्यास कराया गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, फिर आता है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, पहले शक्ति फिर शांति। हमेशा सद्भावना दो तरफा होती है। बहुत लंबा बोल सकता हूं ठीक है, लेकिन समय कम है, और आप लोग, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यहां पर भी एक अद्भुत सद्भावना है। क्या सद्भावना है, जो सभा के संस्कार होते हैं, किसी भी सभा के संस्कार होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जब दोनों पक्ष मंच और श्रोता, जब डायस और श्रोता ये दोनों पक्ष एकाकार हो जाएं, यानी एक आकार के हो जाएं, जितने लोग मंच पे हो उतने ही लोग श्रोता बचे, तभी सद्भावना जो है सभा पक्ष में स्थापित होती है। तो ये जो आपकी सद्भावना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, आपने मैंने सुना, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी का। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने हमें बातें कही कि शांति कब होती है, पहले शक्ति फिर शांति तो सद्भावना आती है। और अब मैं बढ़ रही हूँ भ्राता करुणा जी की ओर, जो मीडिया विंग के चेयरपर्सन हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी हैं, और आप मेंबर ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर, आप सेक्रेटरी राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, रेडियो मधुबन कम्युनिटी सोसाइटी के भी आप सेक्रेटरी हैं, चीफ ऑफ मल्टीमीडिया हैं ब्रह्मा कुमारी के, मीडिया स्पोक्समैन हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करने जा रही हूँ कि आप अपनी भावनाएं रखें, और मैं एक ही शब्द आपके लिए कहूंगी, बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रकार का समाधान चाहते हैं तो हर प्रकार की समस्या का समाधान आप हैं। मैंने हमेशा आपको इसी रूप में देखा है, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आ जाए हमेशा कहते मैं हूं ना, मैं हूं, मैं मदद करूंगा। ऐसे आप करुणा भाई जी हमें आप अपनी बात रखेंगे।
सत्यम शिवम सुंदरम। मैं मीडिया से ही हूं, हम सभी ने ये सुना है, यहाँ से भी हम दो सैटेलाइट चैनल्स पीस ऑफ माइंड और एक अवेकनिंग बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के हम लोग चला रहे हैं, और गवर्नमेंट ने कम्युनिटी रेडियो का भी हम बच्चों को यहाँ चलाने के लिए लाइसेंस मिले हैं, जो वो भी बहुत अच्छा प्रगति में है। तो लगभग 400 कम्युनिटी रेडियो में हम लोग पहली श्रेणी में आते हैं, जो 10 के अंदर हमारी कम्युनिटी रेडियोस भी चल रहे हैं। तो मैं यही आप सबको कहूँगा कि प्रकाशमणि दादी जी ने सदा ही आप सबको याद करते थे कि मीडिया वालों को बुला करके उन लोगों को कुछ समय शांति अपने मन के अंदर अनुभव करे, वही लक्ष्य उनका था। क्योंकि अब तक आज तक के बीच में हम लोग कैसे पीसते रहते हैं, ऐसे समय पर भी आप सभी आ गए हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंच में मेरे साथ है या मेरे सामने मेरे साथ ये हैं, क्योंकि हम हर सेकंड यही देख रहे हैं कि भाई समय के अनुसार क्या हो रहा है वो आप सब जानते हैं, सभी अलर्ट है, फिर भी आप यहाँ आए और कुछ समय आप अपने लिए देने की प्रयास किए। नहीं तो हम सब यही कहते हैं कि समय नहीं है, इतनी व्यस्त हम सभी रहते हैं। तो ऐसे मैं यही आप सबको निवेदन करूंगा, तो आप यहां से कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैं 1960 में पहली बार आया था, तो मैंने जो फाउंडर बाबा से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं तो अनेक नाम से प्रचलित हुई है, तो उन्होंने अपने मुख से कहा, मेरे सामने ही मैं ये प्रश्न का उत्तर दिया कि भारत की जो पहला धर्म था तो वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्योंकि देवताओं की पूजा हम करते हैं। तो कभी तो इस देश में थे जो हम इन सबको याद करते हैं। तो भले आज अपने को किसी भी जाति से, अभी जाति गणन करने जा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फिर से इस भारत में हम सभी एक भारतवासी है, एक परमपिता परमात्मा का बच्चे है। तो ये ज्ञान देने के लिए ये संस्था को उन्होंने स्थापना की, जो आज 140 देशों में बहुत थोड़े समय में ये ज्ञान सभी को दिया जा रहा है। तो यहां हम लोगों को सिर्फ 5 बातें समझाते हैं। एक है, जैसे सभी कहते हैं मैं कौन हूं, तो हम सब जानते हैं ये शरीर तो नहीं है। दूसरा, ईश्वर के लिए सबकी आस्था है। अभी भी भारत में भले किसी भी प्रकार से है, ईश्वर के लिए आस्था है। जो किसी भी गांव में जाके आप पूछे तो वो भी यही कहेंगे, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो उसके बारे में कि भी यहां बहुत स्पष्ट से किस प्रकार से एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप का शिक्षा दिया जाता है, जो कैसे हम शारीरिक लोगों के साथ अपना संबंध रखते हैं, ऐसे ईश्वर के साथ कैसे रखें प्रैक्टिकली, इसका आप देखेंगे हमारी सब भाई बहनें कुछ है, सदा ही कुछ है। कभी आप इनका इस पे फेस में दिए नहीं देखे तक तो भाई वो बहुत दुखी है, ऐसा नहीं है। और तीसरा, जो ये सृष्टि के लिए जो सोचते हैं कि वह 5 तत्व है, तो ये भी आदि अनादि है, परंतु आज जिस स्थिति में है इसके लिए ईश्वर नहीं जवाबदार है, हम बच्चे हैं। ये शिक्षा हमको दे करके तो फिर से इस सृष्टि के परिवर्तन का एक प्रयास करते आए हैं। तो समय वो चल रही है सृष्टि का एक परिवर्तन का। तो इसलिए आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि यहां से थोड़ा सा जो राजयोग हम सिखाते हैं यहां, तो उसके बारे में आप जानेंगे। और जो अपना कर्म करते हैं इस शरीर से, तो उसमें भी हम सद्भावना कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रहे। भले हम लोग भी अभी प्रोफेशनल है, नॉट कोई वो दूसरा नहीं है, दूसरे अन्य व्यवसाय अनुसार ही हम लोग है, फिर भी अपना जो कॉन्शियस है, सारे भारत इस समय पर पत्रकारों के तरफ ही देख रहे हैं और उन्हीं से ही वो अपेक्षा करते हैं कि भाई कोई ऐसा सजेशन मिले। तो मैं समझता हूं आप जो 2-3 दिन यहां रह रहे हैं, किसी भी स्थिति हमारे सामने आए, परंतु हम विश्व को एक आदर्श भारत बनाने का जो प्रयास है, उसमें हम लोग भी सम्मिलित होकर के हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से करेंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना ये 2 शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्रातर जी का, करुणा भाई जी का, आपने एक सुंदर प्रेरणा, जीवन की प्रेरणा दे दी। राजयोग सीखकर जीवन बनाए। और अब मैं आगे की ओर बढ़ते हुए आप सबको कहना चाहूंगी, सूचना देना चाहूंगी, सायंकाल 4 बजे प्लेनरी सेशन यही इसी हॉल में रहेगा, और उसके पश्चात जो इनसाइट सेशन रहेगा आप जरूर उपस्थित रहेंगे, उसके बाद आपको ईश्वरीय सौगात दी जाएगी। तो अब हम वो जो जीवन की प्रेरणा भाई साहब ने, करुणा भाई जी ने दी है कि राजयोग के द्वारा अपने अंदर शांति और शक्ति को लाएं, ये सीखें, तब हम कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्रभु स्मृति में बैठ के इस कार्यक्रम को, इस सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। आप जहां भी हैं 2 मिनट के लिए शांति में बैठेंगे।